आजाद हैं तेरे,
बोल खिलब आजाद हैं तेरे, बोल के जहां अब तक बाकी है। सुन रहे हैं आप रेडियो आजाद, वेयर योर वॉइस मैटर्स। मैं हूं आजाद, लब हैं आजाद। आज हमारा टॉपिक आप लोगों के लिए, आपका बड़ा फेवरेट, जो पिछली दफ़ा घमसान का रन पड़ा और बहुत सारे लोगों जिन्होंने कॉल किया, साथ साथ दस दस दफ़ा कॉल किया और फिर गिला शिकवा भी आया, तो गिले शिकवे दूर करने के लिए पार्ट टू आपकी खिदमत में हाजिर करने जा रहे हैं जनाब। आज का ये शो जिसमें हम ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा नॉर्थ सीधा है कि नहीं, जो चीज़ पहुँचाने की कोशिश की जा रही है वो पहुँच भी रही है कि नहीं, और क्या क्या परसेप्शन है आप लोगों की, हम लोग अभी तक क्या सीख पाए। बहुत सारे लोग आए थे अपने पॉइंट्स ना लिखने की वजह से, और कुछ ने अपने पॉइंट्स लिखे थे लेकिन कॉल्स बहुत ज़्यादा आने की वजह से। अगर आप, मैं जब आपसे बात कर रहा होता हूँ तो जब रेडियो आप सुन रहे हैं, तो जब तक आपको मैं ऑन एयर करता हूँ और आपको रेडियो की आवाज़ आना शुरू होती है, तब तक आप रेडियो की आवाज़ अपनी बंद मत किया कीजिए ताकि आप सुनते रहें, क्योंकि वो मैंने आपको होल्ड करवाया होता है। सो अक्सर लोगों की आसानी के लिए बता रहा हूँ, जब आप कॉल इन करते हैं तो मैं सारी लाइंस को लॉक कर लेता हूँ, एक एक करके फिर मैं आप लोगों को लेता हूँ। उस वक्त आप लाइन में होते हैं, आप जो भी बोलते हैं वो आवाज़ ना मुझे आ रही है ना ऑडियंस को आ रही है, सिर्फ आपको सिर्फ रेडियो की आवाज़ आ रही होती है। इसका मतलब है कि आप होल्ड कीजिए, थोड़ी देर में आपको लेते हैं। कभी लेट हो जाता है आदमी, कभी बात अगली इतनी इंटरेस्टिंग और पॉइंट चल रहा होता है कि आपको ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन लोग 20-20 मिनट भी इंतज़ार करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया, मुझे एहसास है वक्त का। लेकिन जब पॉइंट्स आ रहे होते हैं तो आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, दोबारा भी आ सकते हैं उसके बाद। सो आप ये मत समझिए कि आपको अभी कॉल ले लिया गया और अभी आपको ले लेंगे, थोड़ा सा कभी कभी इंतज़ार करना पड़ जाता है, तो मेरे साथ रहा कीजिए। इसलिए बहुत सारे लोगों ने अपने पॉइंट्स देने थे, वो पॉइंट्स नहीं दे पाए। कुछ लोगों ने पॉइंट्स लिखे हैं अपने, जैसे कि प्रोग्राम में पॉइंट्स लिखने का हक है। जो आदमी जितना गुड़ डालेंगे ना उतना मीठा होगा, सीखने में भी और समझने में भी। बिल्कुल इसी तरह आज का हमारा टॉपिक है, व्हाट हैव वी गैदर्ड फ्रॉम द शो सो फार, अब तक क्या जमा किया हमने, क्या हमें मिला है, क्या रिमाइंडर हमारे जहन में आता है, क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है तो फिर सुनने की जरूरत नहीं है, फायदा हो रहा है तो क्या हो रहा है और क्या समझ रहे हैं हम उसको। अभी तक हमें अपने बारे में क्या समझ आई है, क्या फिगर आउट किया हमने, एज एन इंस्ट्रूमेंट, एज ए ह्यूमन बींग, एज एन ऑर्गेनिज्म, हमने क्या कर रहे हैं हम, क्या रब्त है हमारा अपने साथ, रिश्ता कैसा है हमारा अपने साथ, उसके बारे में बात होगी। उसके अलावा क्या सोच में बदला है हमारी, क्या किसी चीज़ में कॉन्शियसनेस आई है, जागृत हो जागे हैं हम किसी चीज़ के बारे में कि ओह मैं तो ये चीज़ कर रहा था या कर रही थी जिसके वजह से ये हो रहा है। कम्युनिकेशन क्या बेटर हुई है हमारी आपस के साथ, एक दूसरे के साथ और अपने साथ। और क्या क्या हमने सीखा, सराउंडिंग में क्या बदला है, आपने क्या चेंजेस को अपने ऊपर अप्लाई किया है या सोच में अप्लाई किया, उसके कुछ रिजल्ट्स आए। ये मकसद है बोल के लब आजाद तेरे का, सदका जारी है वो जो आप तक पहुंचाया जाता है। सो स्टूडियो का नंबर है 972-501-9390। पिछली दफा कॉलर्स बहुत थे, इस दफा भी उम्मीद करते हैं बहुत सारे होंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बता दें, पावर ऑफ थिंकिंग से आपको बता रहा हूं। ये शो जिन्होंने पिछला शो सुना है, सीखा, एंटरटेन हुए, अपने पॉइंट्स दिए, उनको बताता चलूं कि ये जो पार्ट टू है इट विल बी मच बेटर देन द फर्स्ट वन। ये कैसे होगा, ये पावर ऑफ थिंकिंग से अभी आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने ऑन एयर आना है, अब कोई कपड़े धो रहा होगा, कोई खाने पका रहा है, कोई बच्चे संभाल रहा है, कोई बच्चों के पीछे भाग रहा है, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, किसी कोई गाड़ी चला रहा होता है, किसी ने आना है जाना है, जिंदगी चल रही है साथ साथ, उसके बीच में आपका वक्त निकालना एहसान है हम पर, और शो में कॉन्ट्रीब्यूट करना लोगों तक पहुँचाने के लिए, और ये रहती दुनिया तक इंशाल्लाह, ये आर्काइव्स लोगों तक पहुँचते रहेंगे कि एक ज़माने में कुछ लोग थे जो इस चेंज में अपने अंदर एक चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे, अपने अपने अंदर, तो ये एक हवा चली थी और उसमें कौन लोग थे जो इसमें थे साथ, और उनको वक्त से पहले समझ थी इस चीज़ की कि इसकी ज़रूरत है। सो जनाब ये है जी आपकी इम्पॉर्टेंट शो के लिए, नंबर है स्टूडियो का 972-501-9390। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक फरमाइश आई है जनाब कि आपका चले पहला ट्रैक शुरू करते हैं जनाब उन मेहरबान के नाम से जिन्होंने कहा जी मैं आपने ये गाना सुना, मैंने कहा जी मैंने नहीं सुना फिलहाल मिका सिंह के गाने कभी कभी ऐसा मूड होता है बंदे का तो आप सुनते हैं उनको, लेकिन उन्होंने कहा जी मुझे पता है उनके ज़्यादातर गाने उनका लफ्ज़ था फजूल होते हैं लेकिन मज़े के होते हैं बहुत, लेकिन ये वाला जो गाना है इसमें उन्होंने फ़न भी बहुत किया है, उसमें काम की बातें, और जो आप शो में करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा दिल चाहा कि आप हम इसको डेडिकेट करें आपके लिए और शो के लिए। तो चलिए ये ट्रैक है उनकी तरफ से, हम भी सुनते हैं आप भी सुने और फिर बाकी आप लोगों को लेंगे ऑन द एयर। तैयारी पकड़ लीजिए अपनी अपनी 972-501-9390। कहने को तकरीबन 8 घंटे मुसलसल मैं आपको बता सकता हूँ मैंने शो से क्या सीखा, लोग भी बता सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर फिल्म में सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं होता, मोनोलॉग पे नहीं, सोलिलिक हुई नहीं है ये शेक्सपियर भाई की, जो एक बंदा खड़ा होता है फिर बोले चले जाता है, ठीक है तो कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने पॉइंट सारे लोग देंगे और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर कॉलर आ जाए तो जाहिर बात है जब कॉलर आ जाता है उसके पास एक पॉइंट होता है, वो पॉइंट ही सब कुछ होता है। को मेहरबान है हमारे साथ रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर।
अस्सलाम वालेकुम,
जी
कैसे
वालेकुम
हैं आप?
सलाम, बिल्कुल सोए सोए बच्चे, कैसे हैं आप?
बिल्कुल ठीक।
आज थक गई हैं आपसे।
मेरा पहला पॉइंट है कि ये शो मेरे लिए ऐसे है जैसे एक आईना होता है, जो कि जो आपके अंदर ऐब होते हैं या जो भी होता है वो साफ साफ आपको दिखा देता है। और इस शो की वजह से मैं अपने आप से आगाह हुई हूँ और मैंने अपने अंदर झांका है। मैं अपने जो मेरी सोचें होती हैं मैं उन पर भी देखी होती हूँ कि मैं मेरे अंदर किस तरह के हालात आ रहे होते हैं और जो कुछ मैं गलत करती हूँ उसके ऊपर भी मैं मतलब मुझे पता होता है ये मैंने गलत किया, ये हम मैंने गलत सोचा। तो मैंने बहुत सारी अपनी गलतियां जो है ना वो इस शो के बाद जानी है जो मेरे अंदर है और उनको ओवरकम करने की कोशिश करती हूँ।
ठीक है, ये मुझे बताइए जब आप कहती हैं शो एक आईना है जिसमें आप अपने आप को देखती हैं, तो इस आईने की सफाई करने वाला आदमी सही जालिम है कि नहीं? कोई कार्रवाई नहीं दिखाता कि भाई ऐसे हो जाए वैसे?
वो हमारा हैर है, वो हमारी बेहतरी चाहता है।
ये अगर ये सब अल्लाह करे बाकी सभी को एक आध बंदे को और समझ आ जाए। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू। अच्छा फिर और पॉइंट्स?
और एक इतनी प्यारी दुआ मैंने आपसे फर्स्ट टाइम सुनी थी, जो आप कहते हैं कि हुजूर पाक की बड़ी फेवरेट दुआ थी कि ऐ मेरे रब मुझे चीजों की असल हकीकत का इल्म दे, तो ये फिर मैंने अपनी भी दुआ बना ली और मैं ये बहुत दुआ मांगती हूँ अपने लिए भी। और दूसरी भी जो बहुत प्यारी वो जो आप कहते हैं कि दूसरी वाली ओ गॉड grant me the serenity to accept the things that I can change, courage to change the things that I can, and wisdom to know the difference. ये भी बहुत प्यारी है।
ठीक है।
और इसके अलावा emotions को काबू रखना वो आपने बताया।
कैसे बताया मैंने आपको? सच सच बताना।
To the point और अच्छे तरीके से strictly भी थोड़ा।
Okay. साथ लाड प्यार भी करके हैं, शुगर कोट करके
जी, लाड प्यार भी करके।
ठीक चल, और
के हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। और हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और कुछ लोगों के बेहतरीन एक्शन से हम सीखते हैं, कुछ हमें अच्छा करके सिखाते हैं, कुछ अपनी बेवकूफियों से सिखा जाते हैं। और मतलब मुख्तलिफ लोग आपकी जिंदगी में आते हैं जिन मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपने आपका जो रिएक्शन होता है वो आपने बताना होता है, उससे पता चलेगा कि आप कैसे हैं। कभी आपने सब्र करना होता है, कभी आपने इस पर अपने गुस्से पर काबू पाना होता है,
कभी आपने सीधा भी करना होता है अगले बंदे को वक्त पे।
और शुक्र बहुत ज्यादा करना चाहिए,
शुक्र करना चाहिए बहुत ज्यादा। ग्रेटफुल शुक्र तब आएगा जब, शुक्र कब आता है?
जब हम चीजों को सीरियसली लेते हैं, समझते हैं चीजों को और अल्लाह ताला की जो इतनी सारी बनाई हुई चीजें हैं जो मतलब जिनको हम यूज करते हैं।
ओके, बहुत अच्छे पॉइंट, बहुत ही अच्छे पॉइंट। कुछ रह गया है? लगता है कोई एक आध सवाल भी कुल बुला रहा है आपके जहन में?
नहीं
अभी नहीं है।
नहीं
ठीक है, और कोई पॉइंट्स इसके अलावा?
क्वेश्चन जो मुझे क्वेश्चन होंगे वो दूसरे इंशाल्लाह शो में।
ठीक है, और अगर अभी भी अब बीच में कोई आता है, क्योंकि जब शो एक दफा गर्म हो जाता है ना, फिर उस वक्त जब कोई चीज आपको मिल सकती है तो जब सिचुएशन बन जाती है ऐसे, एनवायरमेंट बन जाता है, तो कभी परवाह मत किया कीजिए, आ जाया करें। ठीक है
जी, टॉपिक में ये होता है कि टॉपिक पे रहना होता है इसलिए।
ठीक, तो लिसनर शो भी इसलिए आपके ना हफ्ते में दो इंशाल्लाह, और आखिरी हफ्ते में जरूर फ्राइडे वाला शो हमेशा लिसनर शो के तौर पे किया जाता है। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त किस्म का सरप्राइज और एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, जो कि सोचने वाले लोग हैं, कुछ करने वाले लोग हैं, उनके लिए कमाल चीज हम ऑन एयर करेंगे इंशाल्लाह, इसी वीक में करके दिखाएंगे और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक, नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। पहला जी शो बड़ा आला शुरू हुआ, मैंने कहा था कि शो जो है वो खूबसूरत से खूबसूरत होता जाएगा। इन्होंने भी जो पांच पॉइंट्स बताए हैं, अगर हम में से किसी बंदे ने भी ये सुने हैं गौर से और अगर इस ये शो से ये सीखा है तो आपकी पूरी जिंदगी बन सकती है, क्योंकि इन पांच बातों के अंदर मेरी पूरी जिंदगी है जो अभी बच्ची ने आके बताई है। अगर वो ये समझ सकती है जो कि अभी यंग है, तो जो 30 का है, जो 40 का है, जो 50 का है, 60, तकरीबन 87 साल का आखिरी उम्र का बंदा है जो आज तक मुझे मिला है इस शो का लिसनर, सो 87 से लेके 17 तक से ऊपर अगर कोई भी बंदा है जो सुन रहा है और समझ सकता है इन सारी बातों को, तो ये ज़िंदगी बदलने वाले 5-6 पॉइंट्स हैं, इसके बारे में आगे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले उनकी जनाब आज की पहली डेडिकेशन हमारे एक लिसनर की तरफ से जी, उन्होंने हंसते हंसते कहा था, तो पता नहीं गाना कैसा होगा बीच में, बाकी सब फर्स्ट क्लास, इन्जॉय करें, आता हूँ।
धुआंधार निकलती है जवाली, जैसे जैसे बंदूक की गोली, मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे दो ईद में होली, मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जवाली, जैसे जैसे बंदूक की गोली, मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे दो ईद में होली। बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है।
जनाब इस शो के बाद बाकी सब फर्स्ट क्लास है, मेरे जीवन की दिशा थोड़ा रस्तों का नशा, और कमाल की बात, जैसे हो ईद में होली, रब करे जी ऐसा ही हो, क्योंकि मेरा एक बड़ा फेवरेट मिसरा है, बहुत साल पहले जब मैं कभी मुशायरों में जाया करता था, सुना करता था, 7-8 साल पहले जब मुशायरा हुआ करता था, जब कवि सम्मेलन हुआ करते थे और जब सब अपनी अपनी जगह पर ठीक था, तब एक लाइन थी जो मुझे याद रहेगी हमेशा के लिए, खुदा का नाम ले लेकर بلکہ امین چگانی صاحب کہتے ہیں نا خدا, خدا کا نام لے لے کر سبھی کو رام کرنا ہے. ٹھیک, سو امید کرتے ہیں. اور نمبر ہے اسٹوڈیو کا 972-501-9390. ابھی جو پہلی کال آئی تھی, آپ لوگ کال کر سکتے ہیں, لائنز خالی ہیں آپ کے لیے. اور ابھی جو پہلی کال آئی تھی, انہوں نے تین چار باتیں کی. ایک, آئینہ, اگر آپ انسان اپنا آپ آئینہ دیکھ سکتا ہے, جیسے خان صاحب کو کا آئینہ ہے آزاد صاحب, اسی لیے بیچ میں لڑائی جھگڑا تو ہوتا رہتا ہے لیکن پھر ماننی پڑتی ہے, کیونکہ جو سامنے ہے اور اصل میں ہے اس کا انکار جو ہے وہ حقیقت کا انکار ہوتا ہے. جو آدمی جو چیز بھی دعا کرتا ہے نا, ہم لوگ سمجھتے ہیں دعا کی ہے تو اب کام ہو جائے گا ہمارا. ہم نہیں سمجھتے کہ دعا کے پیچھے ایک بہت بڑا سسٹم ہے, ایک پورا میکنزم ہوتا ہے. ایون جو ہم چینٹنگ کرتے ہیں, ہر مذہب میں چینٹنگ ہوتا ہے, جو ورد کرنا جس کو ہم کہتے ہیں, جیسے رب کے نام کا ورد ہوتا ہے, جیسے کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کا ورد ہوتا ہے. یہ آپ کو یہ اب آ کے سمجھ آیا کہ جب پرانے زمانے میں بزرگ جو لوگ ہوتے تھے قرآن کی آیت پانی میں تعویذ کے طور پہ ڈال کر آپ سے کہتے تھے پئیں اور لوگ پیتے تھے. اب جاپنیز ایک کمال بندہ ہے, اس نے پروف کر دیا ہے کہ ورڈز جو ہیں ان کی پاور یہ ہے کہ آپ ان کو واقعی اب اس زمانے میں اس سے علاج کیا جا رہا ہے. تو جو چیزیں پرانے زمانے میں دی جا رہی تھیں, اب انہی چیزوں کو دوبارہ آہستہ آہستہ ہم استعمال کر رہے ہیں. جب انشاءاللہ ٹائم ملے گا تو ہم ہیلنگ کے اوپر جو شو کریں گے اس میں یہ ساری باتیں آپ سے کریں گے کہ بہت ساری ایسی, ہم صرف فزکس پہ دھیان دے رہے ہیں, میٹا فزکس پہ دھیان نہیں دے رہے. ہم صرف انسان کو ہڈیاں اور سکن اور گوشت کا چیز سمجھ رہے ہیں, جبکہ اس کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اتنا ریفائنڈ ہے کہ وہ مطلب بیٹھے بیٹھے جگہ سے, ایک جگہ سے ہزاروں میل دوسرے بندے سے کنیکٹ کر سکتا ہے. اور ٹیلیپیتھی اور دیجے وو, یہ سارے جو ہمارے اندر اوصاف اور ابلیٹیز اور ایٹریبیوٹس رکھی گئی ہیں, ان کو ہم کیسے, جب انسٹرومنٹ ریفائن ہوگا تو وہ کیسے کنیکٹ کرنے شروع ہو جاتا ہے, کیسے آپ کو ملتے ہی پہلے دفعہ ہی بندے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ چلے گا یا نہیں چلے گا, اس کے ساتھ مجھے کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. اپیرنٹلی سب فائدے میں جا رہا ہوتا ہے, لیکن سکس سینس اتنی کمال چیز ہے, وہ پہلے ہی بتا دیتی ہے کہ مسائل پیدا ہوں گے اور وہ ویسے ہی ہوتا ہے. سو انسان کے اندر ابلیٹیز بہت ہیں, صرف ہمیں وقت نہیں مل رہا ہے اور وقت نکالا جاتا ہے. آپ کے پاس وقت ہے یا نہیں, اس اچھی چیز کے لیے آپ کے پاس وقت ہے یا نہیں, پروڈکٹیو چیز کے لیے, کنسٹرکٹیو چیز کے لیے, آپ کی زندگی کے مشن اور ایم کے لیے آپ کے پاس وقت ہے یا نہیں, یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ سمارٹ ہیں یا نہیں. کیونکہ آپ کسی کو سٹوپڈ بولیں تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے وہ, لیکن اگر آپ چوائسز میں بتائیں گے اپنی کہ آپ اپنے لیے وقت کیسے الوکیٹ کرتے ہیں. سب کچھ ہوگا, میاں بیوی بچہ شوہر ماں باپ بزنس نوکری کام دھندا سب ہے, لیکن اگر اس میں آپ نے اپنے لیے وقت نہیں نکالا تو کچھ عرصے کے بعد آپ باتیں کرتے کرتے رونے لگیں گے, پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو. ذرا سا کوئی پیار سے بات کرے گا آپ گر پڑیں گے, وہیں پہ آپ بیٹھ جائیں گے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے, میرا تو یہ خواب ہی نہیں تھا, میری تو یہ سمجھ ہی نہیں تھی, میں تو یہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا جو میں آج جگہ پہ پہنچا ہوں. یہ بڑے سے بڑے لوگوں کو میں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے زندگی میں, جو اپیرنٹلی دنیا میں لوگوں کو پڑھا سکھا سمجھا رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. جو جو بندہ آپ سوسائٹی اور کمیونٹی میں بننا چاہتے ہیں, اس کے دل کا حال اور اس کا جو پریشر ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور برداشت بھی شاید نہ کر پائیں. سو جس آدمی کو دعا کے لفظ یاد ہو گئے, جیسے ابھی امینہ کو ہوئے تھے, بالکل اسی طرح, اے میرے رب مجھے چیزوں کی اصل حقیقت کا علم دے, گیو می دا ٹرو انڈرسٹینڈنگ آف دا ریئلٹی آف تھنگس. تو ہوگا کیا یہ جب آپ پڑھتے رہتے ہیں یہ چیز اپنے ذہن میں, یہ آپ کرتے رہے اپنی زبان میں کریں, تو اس سے کیا ہوگا, بھول جائیں یہ کس کی لائن ہے. وہ عقیدت اگر اس سے ہے تو اس کا بھی بیچ میں شامل ہو جائے گا, لیکن اگر ان سے عقیدت نہیں ہے تو سینٹینس کو سمجھ جانے سے ہی آپ یونیورس کے قانون کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. اس سے ہوگا کیا, بیک آف دا مائنڈ میں ایک آپ کو ہر وقت چیزوں کی میننگ فل بنانے کی سمجھ آئے گی کہ اس سے مجھے کیا ملے گا. پیسے مل جائیں گے تو کیا ہو جائے گا, وہ تو پہلے بھی میرے پاس ہیں. کیا میننگ ملے گا مجھے زندگی جینے کے لیے, میننگ فل ہونا چیزوں کا ضروری ہوتا ہے. رشتہ میننگ فل نہیں ہے تو رشتہ ہونے کے باوجود آپ تنہا ہیں. پیسہ اگر میننگ فل نہیں ہے, اگر وہ ویلیو ایڈڈ پوائنٹس میں نہیں آ رہا, پیسہ کیا ہے, پیسہ فریڈم پوائنٹ ہے. اگر پیسہ آنے سے آپ کو اب چوائس ہے کہ آپ کام کریں نہ کریں, کریٹو کام کریں, سوچیں بیٹھ کے, کوئی نئی چیز کریٹ کریں, ٹریول کریں, کوئی لوگوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, اگر پیسہ آپ کو یہ سب دے رہا ہے تو پیسہ ہے, ورنہ صرف گرین رنگ کا ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جو بینک میں جمع ہوا ہوا ہے اور وہ بڑھتا جاتا ہے اور اس کے لیے آپ خرچے بڑھاتے ہیں اور پھر اس کو پورا کرنے کے لیے آپ اور پیسے کماتے جاتے ہیں. تو یہ تو پھر لائبلٹی ہے آپ کے لیے, پیسہ تو ایسٹ ہونا چاہیے تھا. تو یہ جب ہم چیزیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں چیزوں کی تو یہ چیزیں سمجھ آتی ہے. اور रियलिटी ऑफ थिंग्स, जो रियलिटी मेरी है वो नहीं, जो रियलिटी आपने जहन में बना ली है वो नहीं, जो ट्रू रियलिटी है, हर चीज की एक ट्रू रियलिटी है। और ये लोग कहते हैं ना जी ये तो उसकी रियलिटी है, ये ऐसा तो नहीं होता जो वो कह रहा है या कह रही है, जरूरी तो नहीं वो वैसा ही हो। कोई नहीं कह रहा कि वो वैसा ही हो, हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि जो असल रियलिटी है उसके करीब से करीब, जितना आप करीब होते जाएंगे महबूब के, जितना आप सिस्टम कंपनी का जो है उससे करीब से करीब होते जाएंगे, वो आपको बेनिफिट, इंजन उसका आपको बेनिफिट देना शुरू कर देगा। सो बेसिकली ये होती है जब हम दुआ भी कोई चीज़ करते हैं। फिर कितनी कमाल बात की उसने, ओ गॉड, ये रिहैबिलिटेशन सेंटर जहाँ पे लोग कोई ड्रग से निकलना चाहता है, कोई अपनी लाइफ की जो और 150 किस्म की एडिक्शन होती हैं, हम सिर्फ एक दो अपेरेंट एडिक्शंस को एडिक्शंस कहते हैं क्योंकि सोसाइटी उसके बारे में कुछ कहती है और रिश्ता नहीं होगा और लोग क्या कहेंगे के चक्कर में, हम ये भूल जाते हैं कि 150 किस्म की और एडिक्शंस हैं जो हमने पाली हुई हैं। इनसिक्योरिटी, ये जो अटेंशन डेप्रिवेशन जो हमारा एक बहुत बड़ा नशा है, इसके लिए आप क्या से क्या करते जाते हैं, दूसरों को खुश करने का नशा, वो करते करते आप गल जाते हैं, आपकी हड्डियों का गूदा, बोन मैरो जिसको कहते हैं आप, वो तक सूख जाता है लेकिन लोग नहीं खुश होते हैं। फिर आप किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं हम जिंदगी में, और ये सारे कुछ नशे हैं। कुछ वीक नशा कब, कौन करता है नशा? वीक आदमी नशा करता है क्योंकि उस वक्त वो उसके दुख भूल जाते हैं, गम भूल जाते हैं, ड्रिंक करने से, यू नो, वीड करने, जो भी आपके 150 और मसाइल होते हैं, हर बंदे के होते हैं, हर बंदे का अपना एक नशा है, हर बंदे का अपना एक दर्द है। ठीक, ग्रांटेड, कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ना करें वैसे ना करें, जिसका जो दिल चाहता है करे, लेकिन वो हमेशा वीकनेस जो है ना वो आपको कोई ना कोई नशे पे हुक डाउन करती है। लेकिन एक नशा ऐसा भी होता है जब वो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स इतने ज़बरदस्त होते हैं, जैसे बुरे काम करने का एक नशा है ना, उस तरह अच्छे काम करने का भी एक नशा होता है, जिसको वो लग जाता है तो नशा वो लगाएं जिसका आपको फ़ायदा तो हो कम से कम, आपको दुनिया को इर्द गिर्द को फ़ायदा तो कम से कम होना चाहिए। और आखिरी बात जो उन्होंने बीच में बहुत अच्छी की वो है ग्रेटफुल, ये जो एक्सपेक्टेशन का, आपको क्या लगता है जब हम 6 एपिसोड की सीरीज करते होंगे, फिर मैं किसी लेडी से मिलता हूँ जो 75 इयर्स एज है और वो कहती है कि जाद मुझे तो सारी जिंदगी गुजर गई एक्सपेक्टेशन लगाते हुए, तो मुझे इतनी सी बात मुझे नहीं समझ आई कि एक्सपेक्टेशन को लोअर कर लूँ मैं और मैनेज कर लूँ उनको, तो ये तो तकलीफ ही खत्म हो जाती। 50 साल का बंदा कह रहा है मैंने दुनिया देखी, सब इल्म हासिल किया, सब कुछ किया, मुझे तो पता ही नहीं था कि एक्सपेक्टेशन क्या चीज़ होती है, लगती कैसे है, कैसे जब दूसरा लगाता है उसमें भी हमारा कसूर होता है, उसकी एक्सपेक्टेशन कैसे मैनेज करनी है, अपनी एक्सपेक्टेशन कैसे मैनेज करनी है, रियलिटी, ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखकर रियलिस्टिकली चीज़ों को कैसे देखना है। तो आपको क्या लगता है, तो क्यों है दुख में हम सारे? क्योंकि बेसिक्स ही ठीक नहीं किए और ना किसी ने बताया हमको। कोई है हमारे साथ बेसिक से? याद आया, रेडियो आज़ाद, यू ऑन द एयर। वालेकुम अस्सलाम, लेट हो गई आज आप?
जी इतनी प्यारी पहली कॉल आई थी, अच्छा हुआ लेट हो गई।
देख लें, बताइए।
मैं अच्छा आपका स्टार्ट हुआ है। अच्छा मैं आपको एक दो पॉइंट और मुझे देना है कि आपके शो से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मैंने सीखी है कि मुझे पहले इस चीज का एहसास नहीं था कि मैं फिजूल कामों में और लाइक जो काम वाकई लाइक वर्थ नहीं करते थे, मैं अपनी एनर्जी जो है वहाँ वेस्ट करती थी। तो मैंने आपके शो से ये सीखा है कि मुझे कहाँ अपनी एनर्जी लगानी है, कहाँ जरूरत नहीं है। पहले ये होता था पूरी एनर्जी ड्रेन कर देती थी फिजूल कामों में, और जब एक्चुअल काम का वक्त आता था तो बिल्कुल एनर्जी नहीं होती।
वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं भी साथ साथ रोज सीख रहा हूँ, और स्पेशली शो वाले दिन मैं फोकस करके आयशा जी को, बाकी जो मैं 3-4 काम करता हूँ सबको पता होता है कि आज शो का दिन है, इसलिए मैंने 3 दिन मुख्तस कर दिए, एलोकेट कर दिए, ताकि सबको पता हो कि इन दिनों में मुझे कम से कम 4 बजे से पहले छेड़ना है, 4 के बाद जो मर्जी कर लें आप।
बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा मुझे आपके शो से जो चीज मैंने फील की कि मुझे ये हुआ है कि अपने आप से प्यार करना सीखा है, कि लाइक मैं ये होता था कि लाइक लोगों को खुश करने की ज्यादा कोशिश करती थी और अपने आप को ट्रैक करना कि भाई वो कंफर्टेबल हो जाए, ये हो जाए, और मैं पर अपने आप को करती थी, लेकिन मैंने देखा कि कितना भी मैं कर लूं वो नहीं होता कोई भी सेटिस्फाई और मैं खामा खाई में होती। तो मैंने अब ये लर्न किया है कि आप पहले हो, आप हेल्थी हो, आप ठीक हो, तो आपका एनवायरनमेंट ठीक है। अगर आप ही तकलीफ में हो, आप ही मिजरेबल हो, तो एनवायरनमेंट कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो पहले अपनी टेक केयर करें, मैं अच्छे नजर आओ, अच्छे प्यारे बनो। लाइक मैं बहुत लाइक लुक पर बहुत करती हूँ कि इंसान को अपनी लुक का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए कि बाहर जा रहा है, ये सब चीजें, ये इससे एहसास होता है कि आप अपने आप से प्यार करते हो।
बहुत अच्छे पॉइंट्स। और जब आप बहुत प्यारे लगते हो तो ये रे को डे कर देते हो प्याड़े मेरे नसीब में तू है कि नहीं टाइप गाना सुनते हुआ. बहुत अच्छे पॉइंट, नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल पॉइंट्स जी. दो जो इनके पॉइंट्स थे कि मैंने अपने आप से प्यार करना सीखा, किसी ने बहुत फेमस लाइन कही थी और लोग, हर बंदा जो है ना वो लोग समझते हैं. एक तो ये जो कुछ लोगों ने क्या किया है, इल्म को या तो बहुत मुश्किल कर दिया है ताकि लोग उस तक पहुंचे ही ना और जिनके पास है उनके पास ही रहे, ठीक, या तो उसको इतना स्टीरियोटाइप कर दिया है कि हर बंदा उसके बीच में डालता है. जिसक में एक सबसे कम अकल होता है वो कहता है जी ये तो ईगो की वजह से कर रहा है वो, या ईगो की वजह से कर रही है वो. फिर जिसमें और कम अकल होता है वो कहते हैं जी वो तो नार्सिसिस्ट हो गया है या वो नार्सिसिस्ट हो गई है. एक कैटेगरी में इंसान को डाल दिया जाता है वो 8-10 में से, हालांकि वो समझ ही नहीं पा रहे पहले जिसने चाहा है, खुद को चाहा है जब कहते हैं ना, तो चाहने को हमें आया ही नहीं, अपने आप को चाहना तो कैसे कोई चाहेगा अपने आप को. कोई कहते हैं जी गॉड सिंड्रोम हो गया, जिस जो आपकी मर्जी करता रहे, जिसको आप रगड़ नहीं सकते वो बहुत अच्छा है, और कुछ दिनों के बाद आप उसके भी खिलाफ हो जाते हैं. जिसको पता है वो क्या चाहता है या चाहती है, उसको गॉड सिंड्रोम. लोग एक तो गॉड को इतना छोटा समझते हैं कि इस वर्ड में उन्होंने डाल दिया कि फलां को गॉड सिंड्रोम है जी, वो अपने आप को खुदा समझता है. तो औकात में रहकर सोचा करें कि अगर आप ये सोच भी सकते हैं कि कोई बंदा अपने आप को खुदा समझता है तो आपकी खुदा के बारे में सोच बहुत नीच है. समझें इन बातों को मुंह से निकालने से पहले. किसी ने इंग्लिश का लफ्ज बनाया है तो हमने यूज करने पहुंच जाते हैं और हमें लगता है कि जी ये बड़ा, अब मैं पढ़ा, हर बंदा पिछले दिनों पर से बहुत कह रहा था, खाम खाई पर से कह देते थे. जिधर पर से नहीं लगना चाहिए था वहां पर भी पर से ही कह देते थे वहां लोग. तो कह देने से पहले समझें तो सही कि पर से यहां लगता भी है कि नहीं. जोई की तरह एक्रिमोनियस सीख लिया वर्ड तो हर जगह ठोक देते हैं वक्त सही जगह पे लगा. तो कुछ फैड्स होते हैं जो कि, या कुछ वर्ड्स होते हैं जो लोग ऐम ही फेंक रहे होते हैं इधर उधर. तो कम से कम उसको सही समझें तो सही कि लफ्ज यूज कर लेने से आप अकलमंद नहीं हो गए. इस शो में मैंने एक और चीज देखी है, इसी के बारे में बात बताता हूँ, लेकिन चलें यहीं से इस बात का सिलसिला जोड़ेंगे. मजे का है, हो रहा है शो. थैंक यू वेरी मच, नाइस ऑफ यू. रेडियो आजाद, यू ऑन द एयर. हेलो, कट गए आप, दोबारा आ जाइएगा. बर्नॉल भी नहीं हमारे पास, खुद लगा लीजिए 972-501-9390. तो लविंग योर सेल्फ, देर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, ठीक है, बट एट द सेम टाइम लविंग योर सेल्फ का मतलब क्या है ये समझना बहुत जरूरी है. फिर आप अपने आप से जरूर मोहब्बत कीजिए, बट पहले समझिए कि सेल्फ लव करना, अपने आप को पसंद करना. लव करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सबसे बेस्ट हैं और हमेशा ही बेस्ट रहेंगे, ऐसा कोई दुनिया में आदमी नहीं होता. तो एक आदमी नार्सिसिस्ट या एक औरत नार्सिसिस्ट कैसे हो सकती है जबकि वो भी हर चीज में अच्छी नहीं हो सकती और उसको पता भी है वो अच्छी नहीं हो सकती, ठीक है. तो इनसिक्योरिटी का नाम कुछ लोगों ने नार्सिसिज्म रख दिया. कोई है हमारे साथ, लेकिन पहले कॉलर. रेडियो आजाद, यू ऑन द एयर. जी मैम,
कैसे हैं आप?
बिल्कुल ठीक, अल्लाह करम, आप बताइए.
अभी आपके ब्रिटिश एक्सेंट को यू नीड टू वर्क ऑन इट.
थैंक यू वेरी मच, आई विल ट्राई.
जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग.
व्हेन आई विल गेट अ फिल्म रिलेटेड टू एंड आई एम स्टारिंग विद कॉलिन फर्थ, देन आई विल बी एबल टू डू दैट. बट बिफोर दैट इट्स अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम. जी
ओके, सो कपल ऑफ पॉइंट्स. एक तो मैंने ये सीखा कि टाइम ऑलवेज चेंजेस. यू नो, यू माइट बी गोइंग थ्रू बैड टाइम एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी देयर फॉरएवर. It will get better, and then sometimes, you know, of course, when bad times go, good times also go.
Mm-hmm.
So, of course, Radio Azad is a big example of that. When you all went through such a bad time, and now you are again back on air, and but you didn't give up. You kept persisting on
mm-hmm.
on doing your work. So, as long as you keep doing your work, you know, times always change. So that's a very big lesson. I've also learned through my own life, and you know, going through some experiences similar to that.
Mm-hmm.
So that was one point, but I have 2-3 questions. Jee. Do we have time for that today?
Yeah, sure, go ahead.
Okay, ek to aap kehte hai ki, well, I ran into someone over the weekend who is going through a bad time, but mm-hmm. ek to usse mere मन में एक क्वेश्चन आया कि आपने एक बार कहा था कि यू नो जब कहते हैं कि योर पार्टनर इज योर नीड इज अ नीड राइट लाइक योर मैरिज इज अ नीड नॉट अ वांट और यू नो आई थिंक वी मेड अ पॉइंट समथिंग लाइक इफ यू से अ वांट देन व्हाई वुड यू नीड इट बट देन ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो से कि यू शुड बी सफिशियंट लाइक यू शुड बी 100%. You know, because I'm confusing that with codependency. So okay. When you say that a spouse or a partner or a friend
uh-huh.
is a need, then how is that different from being codependent?
Good point. Next point. अब ऐसा करें पहले पहले मुझे ये दे दें चलें दे दें दूसरा पॉइंट गो
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अभी आप नहीं नेक्स्ट वाज अ पॉइंट एक्चुअली आई वाज मेकिंग बिकॉज़ मैंने फिर खुद के एग्जांपल्स दिए फॉर दिस पर्सन बिकॉज़ दे वर गोइंग टू बैड टाइम
सेकंड पॉइंट
बट देन माय पॉइंट वाज दैट यू नो गोइंग टू सेल्फ इंप्रूवमेंट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन Self-development, and because I was giving these examples, this point came to my mind. Self-development is not a straight line.
Mm-hmm.
Because even though I would be in a better place today, there's such so many ups and downs. Because, you know, maybe I'm in a better place, but then, who knows, maybe a few days down the line, I might go through a bad time again myself. So, I just wanted to make a point, again, going back to the first point, these ups and downs always happen, even after you have overcome some of these issues and worked on yourself so much
थोड़ा सा ना मैं आपका आपका पॉइंट मैं समझ गया हूँ थोड़ा सा पीछे होके बैठिए और सिर्फ पांच मिनट गौर से बात सुनिएगा आपके दोनों पॉइंट्स बीच में आ जाएंगे पहले आपने कहा था कि मैंने कहा कि योर पार्टनर इज अ नीड और समथिंग कोई और बात हुई होगी मैंने कभी किसी को पार्टनर के तौर पर इस तरह मशवरा में स्पेशली मियाँ बीवी के बीच में मैं कभी मशवरा जो है ना वो देता नहीं हूँ क्योंकि रब उसके बारे में कोई चीज़ कहता है और ये इतना इमोशनल किस्म का रिलेशनशिप होता है और जिस पे गुजरी होती है सिर्फ उसको ही पता होता है सो जो भी दुनिया का सबसे स्ट्रांग रिलेशनशिप ही मियाँ बीवी है या लवर्स का रिलेशनशिप है जब वो मोहब्बत में होते हैं जब इनको या मोहब्बत का बुखार चढ़ा होता है या असल में जो भी वो करना चाहते हैं और दुनिया का सबसे डेंजरस रिलेशनशिप भी है क्योंकि इसके बीच में फिर लोगों ने जो अपने आप को बर्बाद किया है और कभी कभी दूसरे आदमी को बर्बाद करने के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि वो फिर भी खुद ही बर्बाद होंगे तो इसलिए जब भी मियाँ बीवी के बीच का कोई भी मामला आए तो हमेशा थर्ड पार्टी होके इंडिपेंडेंट एग्जाम्पल देनी पड़ती है और बजाय इन दो बंदों को इनको बीच में से पहले बात समझ के फिर आप इनको निकाल दें इक्वेशन से और फिर उसके बाद दो बंदों के बीच की इक्वेशन बनानी पड़ती है उसमें रोल डिफाइन करना पड़ता है उसमें बायस्ड हुए बगैर किसी की तरफ इंक्लाइन किए बगैर कभी कभी कुछ लोग आउटराइटली रॉन्ग होते हैं और कुछ लोग इनेबलर होते हैं बंदे को बुरा बनाने के लिए या बंदी को बुरा बनाने के लिए ये बात मैंने कैसी सीखी ये बात मैंने ऐसी सीखी कि एक आदमी जो कि एक दो रिलेशन जब बहुत सारे लोगों से आप मिलते हैं तो मैंने ये महसूस किया कि एक इंसान एक बंदे के एक बंदी एक बंदे के साथ है तो वो इरिटेटेड है वो गुस्से में रहती है वो परेशान रहती है वो उस ऐसी ऐसी बातें करती है जो कि वो है ही नहीं फिर कुछ अरसे के बाद जब जिंदगी बदलती है तो उनका एक दूसरा पार्टनर उनको मिलता है उनके साथ उसमें उनको ये प्रॉब्लम्स है ही नहीं और वो जो पहला बंदा था उसमें भी कोई अपेरेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो इसका मतलब है कभी कभी आपको सिर्फ दूसरे बंदे के उठने बैठने चलने फिरने बात करने और चीजों को हैंडल करने से ही एलर्जी होती है और हमारे लोग क्या करते हैं ये बेसिक चीज देखे बगैर ये बिल्कुल और वो रिसर्फेस कर सकती है जैसे एक बंदे को एक एलर्जी है एक वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो रहता है और किसी दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो आता है तो वो ठीक हो जाता है दो तीन साल के लिए लेकिन उसके बाद फिर ये एलर्जी सरफेस करने लग जाती हैं ये मेरे साथ हुआ और लोगों के साथ भी होता है ये मैं एलर्जी वाली बात बता रहा हूँ लेकिन उसके बाद बाकी लोगों के साथ भी ये सारी चीज़ें होती हैं तो कभी कभी अपेरेंटली बंदा या बंदी में बुराई नहीं होती है वो एक दूसरे के लिए कंपेटेबल नहीं होते और वो जोर लगा रहे होते हैं जब आप फ्रिक्शन पैदा कर रहे हैं चीज़ों में तो वियर एंड टीयर बहुत हो जाती है सो ये समझना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए कि दैट्स वाई आई रोट दैट आज़ाद थाट देर इज़ अ लॉट That goes into that Azad thought that you guys see on Facebook page and Instagram, azadkhan.official pe. Usme bahut brainstorming karni padti hai. That's why I said people are generally good, but sometimes they're not good for you. ठीक है एक कॉलर पहले लेते हैं फिर ये आपके पॉइंट्स को मैं आगे एलैबोरेट करता हूँ दोनों पॉइंट मेरे पास लिखे हुए हैं और उसमें सेल्फ डेवलपमेंट का फुल टाइम होना और पार्ट बार बार होना वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका नाइस ऑफ यू मैम रेडियो आजाद यू ऑन द एयर जी वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं
बिल्कुल ठीक ठाक मजे में मैं अभी दो तीन कॉलर्स को सुन रही थी उसके तहत मैं ये कहूंगी कि इस जिंदगी में और जिंदगी को समझने के लिए जब तक हम टाइम निकाल के और इनर जर्नी नहीं करेंगे जब तक चीजें समझ नहीं आएंगी आपकी बातें आपकी थॉट्स मैं अक्सर पढ़ती हूँ लेकिन मसला ये है कि इसको एब्जॉर्ब करना और एप्लीकेबल बनाना वो जरूरी है उसके लिए चाहिए आपको अपना टाइम लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है जिंदगी के सारे झमेलों में
ये दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे और मैं आपको ना अपनी इसकी स्ट्रगल साथ रिलेट करता हूँ इससे ठीक है पहले मैं बहुत अच्छा पॉइंट था आपका इस पे मैं आ रहा हूँ ये जो अपना टाइम आपने बल्कि पहले इस बारे में बात कर लेते जो अपना टाइम होता है मुझे एक तकलीफ है ठीक है, मैं अपना कह रहा हूं इस वक्त आपसे, पर्सनल बात करूं, एक दर्द है जो जा नहीं रहा है, एंड फाइनली आफ्टर सो मेनी इयर्स आई हैव फिगर्ड आउट अ वे कि मैं उसको ठीक कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए अब मेडिटेशन की जरूरत है। अब माइंड रनी है, काम ज्यादा ले लिए हैं इस वक्त जो मैं कर रहा हूं, और मैं बहुत सारी चीजें, आई कैन मेक थिंग्स हैपन इन माई हेड, आई ऑल्सो नो दैट, बिकॉज मैं आपको बताया भी है कि मैं तीन बेसिक बड़ी जो जिंदगी के सबसे बड़े मसाइल थे वो मैं अपने जहन से ही फिगर आउट करके निकला हूं उनमें से। लेकिन इस वक्त जिस जंक्चर पे मैं हूं, मैं वो फोकस नहीं कर पा रहा, मैं मेडिटेट नहीं कर पा रहा हूं, और मेरा ध्यान उस जगह पे जा नहीं रहा, मेरे जहन का ध्यान नहीं जा रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जहन कितनी कमाल चीज है। आप हजार बंदा एक ग्रुप में ले लें, हजार बंदा दूसरे, ये मैं आपको साइंटिफिक रिसर्च बता रहा हूं, हजार बंदा एक ग्रुप में लें, हजार दूसरे में, 2000 बंदे हो गए, और आप उनको बताएं जी आपका आपका शुगर कम लेवल कम करने के लिए या डायबिटीज आपकी ठीक होने के लिए आप पे एक दवाई ट्राई की जाएगी और आप उससे 100% ठीक हो सकते हैं, ये उनको आप कह दें, हजार उनको आपने बता दिया आप उसे ठीक हो सकते हैं, हम इसके रिजल्ट चेक करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, और बहुत कमाल होने वाला है, FDA इसको अभी अप्रूव करने जा रहा है, और इट्स अ मिरेकल, ये आप उनको बता दीजिए बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। हजार को दे दें आप गोली और हजार को दे दें आप वाइटमिन दे दें कोई, उनको पता नहीं है। लेकिन आपको पता है कि जो लोग हीलिंग के बीच में हैं और जो लोग स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की तरफ जाते हैं और जो एनर्जी हीलिंग करते हैं और जो बहुत सारी और बातें आपसे क्वांटम फिजिक्स करते हैं, वो को हवा में पागल नहीं है, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी गुजारी है इस काम में। स्पेशली ये पर्टिकुलर बंदा जो था, ये काम ये करता था, ये मेडिसिन को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में था, ये चेक करता था, तो वो कहता है मैंने अपनी जिंदगी के जो 25-30 साल गुजारे हैं, मैंने ये देखा कि ज्यादातर 40% ऑफ द पीपल हु आर हैविंग दैट प्लेसिबो, जिनको सिर्फ दिया जा रहा है, सिर्फ उनका माइंड सिर्फ काम कर रहा है, 40% लोगों में एग्जैक्ट वही चीजें आ रही हैं जो गोली खाने वालों के बीच में आती हैं। एंड ही सेड के सो मच सो 74% तक मैंने देखा अपनी रिसर्च में कि 74% तक लोगों ने एग्जैक्टली वही उनकी बॉडी में चेंजेस आई जो कि जो हजार बंदा गोली खा रहा था असल वाली जिससे ठीक होनी थी चीज। तो इसका मतलब है कि जब आप अपने माइंड को समझ लेते हैं किसी एक चीज पे, आप इसीलिए तो कोई टीचर नहीं पकड़ रहा, कोई उन टीचर्स के खिलाफ आपके जहन में इतना गंद होता है, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, फलां नहीं होता, वो ऐसे कह दिया, उन्होंने ऐसे कह दिया, वो लेडी मुझे ऐसे कह गई, उसने मुझे ऐसे कह दिया, इसीलिए हम लोग अपने माइंड को इस्तेमाल करना नहीं आता, वरना इट्स अ मिरेकल, इट कैन हील योर बॉडी इटसेल्फ, एवरी ऑर्गन हैज नेचुरल इंटेलिजेंस टू दोबारा रीजनरेट कर देगा वो, लेकिन उसके लिए साइंस तक आपको बता चुकी है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। अब माइंड में मेरे ब्लॉक लगा हुआ है, मैंने हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी ठीक की अपनी जिंदगी की, लेकिन उस वक्त मैं कॉन्शियस नहीं था। अब मैं जब कॉन्शियस होकर करने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे मुश्किल पेश आ रही है, मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा उस जगह के ऊपर। तो कभी इसीलिए मैं शो कैसे करता हूं, ये वाला जो आपके पास है और सालों से हो रहा है, इसको मैं बहुत ज्यादा इसको डिटेल में जाके सीख समझने की आप कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि एक चीज मिरेकुलसली हो रही है तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए उसके बीच में, लेकिन कभी ना कभी फॉर्मूला या कोड जरूर बना लेना है ताकि किसी और का फायदा हो जाए। इसीलिए मैंने डी कोड करके इस शो को, इसका एक एल्गोरिथम बनाया है जो प्रोग्रामर्स को आसानी हो इस काम में, और एक दफा वो बेसिक समझ जाए फिर आगे चीजें वो खुद बना लेंगे, और फिर आगे इट विल टेक अ शेप ऑफ इट्स ओन। क्रिएटिव काम में मैं अक्सर लोगों से कहता रहता हूं और वो कहते हैं अच्छा जी ये जो नज्म लिखी गई, ये जो प्ले लिखा गया, इसको ऐसे कर दें, इसको वैसे, ये जो पेंट, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, क्रिएटिविटी विल टेक अ शेप ऑफ इट्स ओन स्लोली एंड ग्रेजुअली। आर्ट, किसी बहुत ही सियाने कमाल आर्टिस्ट ने कहा था, आर्ट इज नेवर एग्जॉल्टेड इन द बिगिनिंग, इट्स पर्सनल। शुरू में जो आर्ट होता है वो आप उसको कमाल चीजें नहीं आप बना सकते और ब्रिलियंट और जबरदस्त, शुरू में वही हैं आप जो हैं, आपका दर्द, आपकी एक्सपीरियंसेस, आपके अंदर से नेचुरल आने वाला टैलेंट, वो एक फ्लो में पहले निकलेगा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, आप अलामा इकबाल की शायरी देखें, शुरू देखें और फिर उसके बाद उनका अख्ताम और एंड देखें, जितना जर्फ बढ़ता जाएगा, जितना एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जितना आपका कमाल बढ़ता जाएगा आपके काम के अंदर, तो क्रिएटिव काम भी स्लोली एंड ग्रेजुअली होगा। एक दिन में कोई बहुत बड़ा एक्टर, बहुत बड़ा डायरेक्टर, बहुत बड़ा पेंटर नहीं बनने वाला है, इसीलिए आपको यह डर अपने अंदर से निकालना है। इट विल टेक अ लाइफ ऑफ इट्स ओन, इट विल टेक अ शेप ऑफ इट्स ओन, जिंदगी भी ऐसे ही चलती है। ठीक हो गया, तो अब मुझे उसके लिए स्पेशल अपना वक्त, अपना टाइम, जैसे अभी मैडम ने आके कहा था शनाज जी ने, कि अपना वक्त निकालना पड़ता है और हम वो नहीं निकालते, तो अब मैं उसके ऊपर मुसलसल काम कर रहा हूं। मेरे दिमाग में वो यही चल रहा है कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, मुझे इसको करना है। एक जमाने में आर्मी में थर्ड यू नो चिनअप्स होते थे और वो टेस्ट होता है, तो वो चिनअप्स होते थे, मैं बड़े आराम हल्का सा था, बाजू ठीक थे, तो मैं चिनअप्स बड़े आराम से कर लेता था। सेकंड में भी गए तो उन्होंने चिनअप्स बढ़ा दिए, वो भी हमने कर लिए बड़े आराम से। थर्ड में एक अजीब चीज़ करनी थी जिसकी तुक नहीं बनती है, कि आपने बीम को पकड़ना है और उसके बाद पूरी अपनी बॉडी उठाकर बीम के ऊपर सवार कर लेनी है आपने, मतलब एंगल बना के टांगे ऊपर ले जाना है। तुक नहीं बनती थी इसकी, उसके लिए कोर के मसल्स, मुझे नहीं पता था कि ये कोर के मसल जब तक नहीं इंप्रूव होंगे ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो रोज शाम को, क्योंकि मुझे एम्बैरेसमेंट होती थी, फिजिकल तो आप फिट हैं, कॉर्पोरल भी हैं, लोग आपको पीपो लुक अप टू इट फॉर इंस्पिरेशन, और आप जो है वो एक बीम से अपने नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैं हर रोज जाता था वहां पर और ये करने वही करने की कोशिश करता था। सो वन डे मैंने उसको, मैं नहीं कर पाया वो, तो मैंने कहा इसका कोई आसान तरीका निकालो भाई, ये तो मुश्किल है, ये तो नहीं होगा फिर मेरे से। तो आई फिगर्ड आउट अ वे जिससे मैंने फौरन में एकदम करके मैं जंप लेके, इससे पहले कि वो कहते मैं पहले ही वो एरो एंगल बना लेता था, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। सो लेजी आदमी क्या, अगर आप लेजी हैं तो बी अ स्मार्ट लेजी। स्मार्ट लेजी क्या करता है, वो मुश्किल काम को आसान करने का रास्ता निकाल लेता है, एटलीस्ट वी कैन डू दैट। तो इसी तरह हमने अभी, आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन इट, आई एम स्ट्रगलिंग विद इट, बड़ा मुश्किल हो रही है मुझको, बट आई नो आई कैन डू इट, आई हैव डन इट इन द पास्ट, बट आई डिड इट सबकॉन्शियस लेवल पे, मैंने अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियस लेवल पे मैंने किया, लेकिन अभी मैं कॉन्शियस होकर करने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, कॉन्शियस होकर जो चीजें आपके अंदर नेचुरल टैलेंट है, अगर आप उसको फिगर आउट करके डी कोड करके उसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं अपने लिए किसी और के लिए, तो आप नहीं कर पाते। तो लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपने गिव अप करना है। तो मेरा वो सेंटेंस याद रखिएगा, 2 साल का सोचना परमानेंट आप अपनी पूरी जिंदगी में ले लें इफ यू नीड। चलें आपको आज शो के बारे में बात हो रही है, 2 मजे की बातें बताता हूं। ये शो मैं क्यों करता हूं, ये शो है ना, मैंने शो से क्या सीखा, ये मैं शो इसलिए करता हूं कि मैं, इसका एक रीजन है, मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जिन लोगों से मोहब्बत की है वो 3-4 लोग हैं, और उन 3-4 लोगों ने अपनी जिंदगी में सिर्फ तकलीफें और दुख उठाए, लेकिन वो लोग, मैंने हमेशा आपसे कहता हूं मैं मोहब्बत करता हूं लोगों से जो मेरे से बेहतर इंसान है किसी ना किसी चीज में भी, वो अपनी दुनिया, इस दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान थे वो 4 लोग, लेकिन वो बहुत तकलीफ में रहे और उनकी तकलीफों की सिर्फ 2 वजह थी, और वो वजह खत्म करने के लिए मैं ये शो कर रहा हूं। एक, दे डिड नॉट लर्न द राइट वे ऑफ थिंकिंग, हाउ टू थिंक टू लिव अ गुड लाइफ दैट दे एक्चुअली डिजर्व्ड। और मैं उनको बात बताते रहे, समझाते रहे, लेकिन उनके अपने कंडीशनिंग होती है, चीजें होती हैं, वो नहीं समझ पाते, ब्लॉक लग जाता है। और दूसरी बात, दे डिड नॉट लर्न टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, तो अंदर जो उनका अच्छापन था वो भी दुनिया को नहीं बता पाए कि वो हैं कौन, वो करना क्या चाहते हैं, वो अपना दुख, अपनी खुशी, अपनी चीजें, अपने अरमान शेयर ही नहीं कर पाए दुनिया के साथ। और ये बात मुझे तकलीफ देती है, और मैं चाहता हूं कि अगर फर्ज करें, मैं उनको इस जो खुशी वो डिजर्व करते थे, अगर मैं उनकी खुशियां नहीं देख सका, तो ये समझकर कोई तो अपने प्यारों की खुशियां देख सकता है। सो ये है वो रीजन जिसकी वजह से, कि अगर लोग अच्छे हैं तो वो तकलीफ में क्यों है फिर, अगर 2 चीजें ही सीखनी है, एक अपने आप को समझना है और सोच का तरीका बनाना है, और दूसरा उसको कम्युनिकेट करना है, क्योंकि कम्युनिकेट किए बगैर चीजें नहीं समझ पाएंगे लोग। ये जानना कि उसको पता होना चाहिए, ये बेवकूफ की निशानी है। 35 साल बेवकूफ रहा हूं मैं इस काम में, अब आपका काम है सिंपल तरीन तरीके से उस बात को अगले तक पहुंचा देना, फिर देखना वो क्या करता है क्या नहीं करता। सो और एक और आपको मैं बात बताऊं जिसकी वजह से ये बात मैंने आपसे कभी नहीं की, आज तक ये 1500 शोज में नहीं किया, आज करने लगा हूं मैं आपसे। बचपन से हम सुनते आए हैं कि ख्वाब देखें, ख्वाब जो देखते हैं उनके ही सपने पूरे होते हैं, वो किसी स्मार्ट आदमी ने आपको बताया, बट एट द सेम टाइम जो उस बंदे ने एक बात नहीं बताई आपको, कि अगर आप सिर्फ ख्वाब देखेंगे और उन ख्वाबों को, वीक बंदा जब ख्वाब देखता है तो वो उसकी एक्सपेक्टेशन बना लेता है और वो ही उन्हीं ख्वाबों के नीचे तिल तिल मर के दब के मर जाता है। लेकिन एक स्ट्रांग या समझदार आदमी जब ख्वाब बनाता है तो उसका ख्वाब उसका एम होता है, उसकी वीकनेस नहीं होती, उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसके रास्ते में वो ऑब्जेक्टिव्स बनाता है, उसको पैशन को प्रसू करते करते वो अपनी बहुत खूबसूरत जिंदगी जी के चला जाता है, इसलिए ख्वाब जरूरी है। लेकिन अगर ख्वाब ने एक्सपेक्टेशन बना ली, अगर आपने ख्वाब को पूरा करने के लिए रोड मैप नहीं बनाया, आपने रास्ते में छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं बनाए, आपने वेंट आउट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए मोमेंट्स नहीं निकाले, लोगों के साथ वो मोमेंट्स शेयर नहीं किए, तो आप थक जाते हैं और फिर एक्सपेक्टेशन आपकी बढ़ जाती है उससे, वो एक्सपेक्टेशन जो कि आपका زندگی کا مقصد ہونا چاہیے تھا خواب، اب وہ آپ کی مجبوری اور کمزوری اور آپ کا عذاب بن گیا ہے. کوئی ہے ہمارے ساتھ؟ ریڈیو آزاد، یور آن دی ایئر.
السلام علیکم آزاد جی.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. نئے سیل ڈلوائے ہیں آپ نے؟ انرجی بہت ہے.
میں ہمیشہ سیل ڈلواتی رہتی ہوں. اور ابھی آپ جو کہہ رہے تھے برنول کی بات کہ اگر آپ کے پاس برنول ہے تو آپ واپس آ جائیں، تو برنول تو میرے پاس بہت ہے آزاد جی. پاکستان سے بس برنول کا تو کوٹا بہت اچھا رکھتی ہوں
میں. وہاں سے نا ایک بچپن سے ایک لگاتے آ رہے ہیں، چہرے پہ کوئی دانا یا کہیں پہ بھی نکلے ڈوگوں کو بتا رہا ہوں ہے اینٹی بایوٹک کم یوز کرنی چاہیے، اسکن کو خراب کرتی ہے. لیکن سب سے جو اچھی چیز ہے نا وہ ہے پولیفیکس. بچپن میں ہم لگاتے تھے تو جو بھی کہیں گاؤں جاتا ہے نا میں اس کو کہ یا شہر جاتا ہے پاکستان، تو میں کہتا ہوں پولیفیکس لیتے آنا، تو اس سے ہمارے آدھے سے زیادہ پرابلم ٹھیک ہو جاتے ہیں.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پولیفیکس. اور آپ یقین کریں برنول آزاد جی میں بتا نہیں سکتی کتنا بیسٹ ہے وہ. ہر چیز میں اگر آپ وہ لگا لینا تو بالکل آپ کی ٹھیک ٹھیک ہو جاتی ہے، چاہے جلا ہوا ہو کٹا ہوا ہو کچھ بھی ہو.
اسی لیے تو اس کا ایڈ کتنا اچھا تھا، کٹ گیا برنول لگائیے، جل گیا برنول لگائیے. تو اس کا ایڈ بھی اسی لیے ایسا تھا کہ یاد رہ گیا آپ کو.
بالکل ٹھیک. اور آپ کے جو یہ شوز ہیں خیر اس کے لیے تو کیا کہیں، میں تو کہتی ہوں کہ آپ جو اپنا ٹائم نکالتے ہیں اور آتے ہیں، اور یہ تو میں سمجھتی ہوں پرائس لیس شوز ہیں. کیونکہ آپ جو اپنے شوز میں جو وزڈم والی جو باتیں کرتے ہیں نا، اور زندگی میں اچھائی لانے والی باتیں کرتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی بھی انسان اس کو اگر اپنی زندگی میں، پہلی بات تو اپلائی کرنا بہت ضروری ہے. اور شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو سراؤنڈنگ میں لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ کیا ایک دم سے کیا ہوا، تھوڑی پرابلمس بھی آتی ہیں شروع میں. وہی ظاہر ہے انوائرمنٹ تھوڑا سا آپ کا بدل رہا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کرتے رہیں اور قائم رہیں، کیونکہ پھر آپ کو اس کے ریزلٹس ملتے ہیں آزاد جی، اور ایسے زبردست ریزلٹس ملتے ہیں. کیونکہ جو فیصلے آپ جلد بازی میں کرتے ہیں نا، اور جو بغیر سوچے، کیونکہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا انسان سوچ کر کرنے کے لیے، آپ کہتے ہیں نا پیدا ہوا ہے سوچ کر کرنے کے لیے. تو وہ جو فیصلے ہوتے ہیں اور اس کے جو کانسیکوئنسز، آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ جو آپ کی جو غلطی ہوتی ہے وہ صرف اکیلی نہیں ہوتی، وہ بچے دیتی ہیں.
بانج نہیں ہوتی غلطیاں، وہ بچے دیتی ہیں، اور وہ پھر لمبے عرصے تک آپ کو ٹارچر ہوتا ہے.
تو جو آپ کے جو اور پھر جب انسان سوچ کر فیصلے کرتا ہے نا، ہر اینگل سے آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے یہ وہ، کئی ہزار اپنے شوز کے واقعی کے میں کہتی ہوں کہ اگر کسی بھی مسئلے میں انسان الجھے، آپ کے مکس کلاؤڈ پہ جائے، یوٹیوب پہ جائے، بس اس کو کلک کرے اور اس کی زندگی آسان ہو جائے، تو مجبور آپ کے شوز لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں.
نائس آف یو مین، تھینک یو ویری مچ، گڈ پوائنٹ. رب کرے جی ہمیں تھوڑا بہت جو سوچنا ہے، اور وہ میں نے اس کو کنڈینس بھی کر دیا ہے، پورے سوچنے کا طریقہ سیکھنے کے بعد سوچنا. ٹھیک ہے، آپ نے آؤٹ لائرز بک پڑھی ہوگی، لوگ بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں، میں چار پیجز پڑھنے کے بعد بور ہو جاتا ہوں کیونکہ وہ مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، ایک لائن میں وہ بتانے کی آپ کو کوشش کر رہے ہیں. وہ ان کی 10,000 گھنٹے کا جو کانسیپٹ ہے بہت اچھا ہے، وہ کہتے ہیں جی جس آدمی نے بھی اپنے کام پر 10,000 گھنٹے لگائے ہیں تو اس کے بعد اس کام کا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے. ہم میں سے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے گھنٹے کام کے لگانا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی 10,000 گھنٹے ہو گئے. ہاں، غور سے نہیں پڑھا آپ نے، بھائی جان کہتے ہیں کہ ایکسپرٹ ہونے کے بعد 10,000 گھنٹے لگانا، اپنے کام میں فنیس لانے کے بعد، اس کو ایکسیلنس پہ پہنچانے کے بعد جو آپ 10,000 گھنٹے لگائیں گے اس کے اوپر، تب آپ ماسٹر بنیں گے اس کام کے. ہمارے والے سمجھتے ہیں جی میں نے کام کے 10,000 گھنٹے لگائے ہیں، میں اچھا کمیونیکیٹر بن گیا ہوں، اچھا اسپیکر ہو گیا ہوں، اچھا میں ٹیچر ہو گیا ہوں، اچھا ایکٹر. ایسا نہیں ہے. سو اس کو ذہن میں رکھ کے میں آپ کو بتا، سوچنے کا صحیح طریقہ سیکھنے کے بعد، چاہے آپ 15 میں سیکھیں، چاہے 25 میں، چاہے 35 میں، چاہے 40 میں، ٹھیک، 2 سال کا سوچنا 80 سال کا سکون، ورنہ افلاطون. اتنا کنڈینس کر کے سسٹم کون بناتا ہے؟ افلاطون بھائی نے کتنے مزے سے آپ کو بات بتا دی، ٹھیک ہے جی، کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی کے ابتدائی سال، انیشل ایئرز آف دیئر لائف، وہ علم حاصل نہیں کرتے. علم کیا ہے؟ علم آپ کے اپنے بارے میں، انوائرمنٹ جس میں آپ رہتے ہیں، دنیا کے بارے میں، اور رب کے بارے میں. یہ تین جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے زندگی کے شروع کے سالوں میں تھوڑا سا وقت نہیں نکالتے، وہ لوگ ساری زندگی جہالت کی سختیاں جھیلتے رہتے ہیں. پرماننٹ پرپیچول میزریبل لائف فار دا ریسٹ آف یور لائف، یہ ہے جناب اس کا رزلٹ. تو اگر ہم بیٹھ کے سوچ لیں، 2 سال سوچ لیں، یہ 2 سال میں نے نکالے ہیں، 2 سال فوج کے، 2 سال زندگی کی ٹریننگ کے. آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، پہلے 2 سال از ویری ٹف، بیکاز میں بہت ساری انفورسین چیزیں آتی ہیں، کرو بالز آتے ہیں بڑے، آپ کو اپنا آپ نہیں پتا ہوتا، آپ صرف پیشن میں جاتے ہیں، زور لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو ٹیکنیک نہیں آتی ہے. ٹیکنیک سمجھنا اصل کام ہے، زور لگانے ایک وقت کے بعد زور نہیں رہے گا ٹیکنیک، کیونکہ تھکتا نہیں ہے آدمی، चाहे वो फाइटर हो, चाहे प्रोग्रामर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे कोई भी हो, टेक्निक पे जोर है सारा, स्किल पे जोर है, स्किल जिसको समझ आ जाए, इसीलिए स्किल सिखाने वाला। उसे मैं एक फिल्म देख रहा था तो उसमें लड़की गाना सीखने आई, तो उसके टीचर ने उसको कहा, बड़ी अच्छी फिल्म है, आप लोगों ने शायद देखी होगी, अभी रिसेंटली आई थी, तो उसमें उसने उसकी आवाज़ की तारीफ की, उसने कहा आवाज़ बहुत अच्छी है, तो उसने कहा शुक्रिया आपने तारीफ की, तो उसने कहा शुक्रिया तारीफ का नहीं होता, शुक्रिया तब अदा करना जब मैं तुमको बेइज्जत करूंगी, सख्ती करूंगी, क्योंकि असल लर्निंग शुरू होगी जब आप पे सख्ती की जाएगी और आपके अंदर से वो काम निकलेगा जो आपके अंदर है और आप उसको बर्दाश्त करना सीखेंगे। कोई है हमारे साथ रेडियो आजाद यूरोन दिए?
हेलो
सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? ठीक हो?
बड़े बड़े अच्छे कॉलर आ रहे ने, बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स दे रहे ने,
ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਾਲ ਹੋ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਇਤਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੋ, ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਂਸ ਲੈ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਕੋ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹਮ ਪਾਗਲ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਖਾ ਆਪਨੇ,
ਮੈਨੇ ਤੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਆਪਕੇ प्रोग्राम से।
दो चार पॉइंट्स दे दे।
पहले कि मेरी जिंदगी का पहला तजुर्बा था कि मैं एयर पे आके बात करी मैंने जब आपसे।
जबरदस्त, गुड गुड, यानी कि आपको थोड़ा सा ये हौसला मिला और ये नई एक नई जोहत मिली जिंदगी, इसके साथ तो आपकी जिंदगी बदल गई सारी।
बिल्कुल जिंदगी बदल गई, मेरा अकेलापन, मेरी उदासी, मेरा सब कुछ बदल गया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता वो भूले बिसे गीत याद आने शुरू हो गए जो मैंने फिर गाने शुरू कर दिए आफ्टर 20 इयर्स।
अब आप समझिए,
आपने मेरे को इतना मेरा हौसला फजाई करा है ना, मेरे को इतना हौसला दिया है और फिर कुछ लिखना शुरू कर दिया, और सबसे पहले मैंने आपकी अम्मी जान के ऊपर लिखा था फिर आपके ऊपर लिखा, फिर छोटे मोटे गाने लिखे, तो मेरी कलम चलनी शुरू हो गई। और इतने अच्छे अच्छे आते हैं एयर पे लोग की उनकी बातें सुन के बहुत कुछ सीखता है इंसान।
और इसके अलावा कोई और चीज जो आपने सीखी हो अपने बारे में?
अपने बारे में यही सीखा कि अपनी जो तकलीफ आई है उसको एक साइड में रख के तो आगे एयर पे देखो आज आपसे बात कर रही हूँ।
बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट।
तकलीफ से मैं से निकली हूँ लेकिन आपकी दुआएं, आपका प्यार मेरे को देखिए, आप मैं बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ।
वाधवा जी आपका ना
ऊपर वाले का बड़ा शुक्र है,
आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। आपको सांस नहीं आ रहा था पूरी तरह और डॉक्टर सारे कह रहे थे और ऑलमोस्ट आपकी आवाज में, सिर्फ आपकी आवाज में नाउम्मीदी नहीं थी, और मैंने आपसे कहा था कुछ नहीं होना अभी आपको, और बाकी हर तरफ से जो हालात चल रहे थे ना वो बहुत बहुत कमजोर हालात चल रहे थे, लेकिन ऐसे फिट होके मुझे, क्योंकि मेरे जहन में एक झमाके से एक फीलिंग आई थी कि मैं आपको दोबारा बिल्कुल उसी तरह ऑन एयर पे सुन रहा हूँ, तो मैंने उसके वक्त आपसे कहा था कि सब ठीक हो जाए।
आपका प्यार, आपकी दुआएं, वही है देखिए आज मैं आपसे बात कर रही हूँ और बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, और मेरे भी जिंदगी में कुछ तजुर्बे आपके साथ रेडियो के साथ जुड़ने से आए हैं कि जब आपने फर्स्ट गेट टुगेदर करी तो मेरा वो पहला जिंदगी का तजुर्बा था कि मैं इतने लोगों के सामने खड़ी होके कुछ बोल रही थी। ये तो वैसे करा था, लाइफ ऐसी थी कि गाने भी गाए, ढोलकी के साथ भी गाए, गिद्दा ऑर्गेनाइज करा करती थी, लेकिन इतने लोगों के सामने खड़ी होकर मैं कभी नहीं बोली थी जो मैंने फर्स्ट टाइम तब बोला, वो भी मेरा जिंदगी का पहला तजुर्बा था।
दिस ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम।
सो बाकी आपका प्यार, आपकी दुआएं मेरे को बहुत बहुत, मेरे को सबने दुआएं करी हैं और मेरे को बहुत, मैं मच बेटर, और उम्मीद है कि और भी ठीक हो के जल्दी आपको मिलूंगी
इंशाल्लाह।
और सबसे बड़ा मेरे को ऊपर वाले का शुक्र करती हूँ जो आप प्यारे बच्चे मेरे को मिल गए।
मेहरबानी, हम लोग लकी हैं जी ऐसा प्यार करने वाली, आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसा प्यार का, टाइम ही नहीं होता किसी के पास प्यार देने।
बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे पास तो लफ्ज दिया। और दूसरी चीज आजाद जी, मैंने जो सीख लिया कंप्यूटर चलाना, जो इस उम्र में मैंने कभी बच्चों के पास भागी जाती थी, कभी ग्रैंड चिल्ड्रन के पास, तो मैंने बोला सिर्फ मेरे को इतना सिखा दो कि रेडियो आजाद कैसे लगाना है, तो अब मैं रेडियो आजाद भी लगा लेती हूँ, मैं ड्रामे भी देख लेती हूँ, मैं कीर्तन भी सुन लेती हूँ, मैं गाने भी सुन लेती हूँ,
देख ले
तो
जब
मेरी लाइफ में ये चेंज आई।
जब बंदे की जो ख्वाहिश एक को पहुंचने के लिए वो कितना मॉडर्न हो सकता है, देखें
बस ये ऊपर वाले की मैं कहती हूँ उसके कर्म है कि तो रेडियो के साथ जुड़ने से आया, नहीं तो अदरवाइज नहीं आना था मेरे को पता ही नहीं चलना था कि कैसे चलो।
अब आप ना जो आपने मिसाल दी है ना, मेरे साथ रहिएगा, और वाधवा ने जी जिन्हें अभी मिसाल दी है, जब वो रेडियो के साथ जुड़ी तो फिर पुरानी भूली बिसरे गीत पे याद आए उनको, गाने और नगमे और ऑन एयर आके और उसके बाद परफॉर्म करना भी, बिल्कुल इसी तरह हमारे साथ भी हुआ, जब हम ऑन एयर आए तो बाकी हमने हर चीज शुरू की, नज्म पहले कभी न सुनाई نہ لکھی نہ کوئی اور کام, بہت سارے اور کام تھے جو نہیں کیے. وہ اردو کے الفاظ جو اسکول میں پڑھا کرتے تھے وہ واپس آنا شروع ہو گئے. جو بھی آپ کے پاس, آپ جن چیزوں کو, what you're seeking is seeking you. اور کل ایک اور آزاد تھاٹ آئی تھی, میں کہا کیپ سیکنگ وزڈم انٹل اٹ اسٹارٹ سیکنگ یو. تب ڈھونڈتے رہیں عقل کو, علم کو, جب تک وہ آپ کو گھر کی لانڈی نہیں ہو جاتی اور آپ کے پیچھے نہیں پھرنا شروع ہو جاتی, تب تک اس کو ڈھونڈتے رہیں آپ. یہ گول چکر ہے. جب یہ سمجھنے کی, اگر ہم یہ سمجھ گئے نا کہ جن چیزوں کے پیچھے آپ جا رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں اگر آپ کے پیچھے آئیں تو اس کی کیا فیلنگ ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے آدمی سونے سے کندن بن جاتا ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے. ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں, بائی دی وے یو آر لسننگ ٹو ریڈیو آزاد ویئر یور وائس میٹرز. منرل ویلز ریڈیو کا نمبر ہے 972-501-9390. ابھی بہت سارے کالرز آنے ہیں, بہت سارے پوائنٹس رہتے ہیں لوگوں کے, اور کچھ ایکسپیکٹیشن, ہاں ایکسپیکٹیشن سے ریلیٹڈ یاد آیا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ ایک بہت اچھی ہم نے ایگزامپل دی تھی سمن جی کے نام سے, میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنے چھوٹے بھائی کے گھر جاتا ہوں تو میری لیسٹ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں اور وہ ہمیشہ اس سے اوپر کرتا ہے, تو اس سے مجھے کتنی خوشی اور کتنا سکون ہوتا ہے. تو وہ پوائنٹ ایکچولی ومل اوبرائے جی کا تھا, اور سمن جی جو ہیں ان کی دھرم پتنی ہے جناب. تو وہ دونوں آپس میں جب مل کے آپس وہ پوری فیملی بیٹھتی تو لگتا ہے ایک ہیں. جیسے فیملی آف کانشنسنیس ہوتی ہے نا, جیسے گاڈ از دا ہیڈ آف دا فیملی اینڈ باقی لو ایک فیملی کا ممبر ہے, وزڈم ایک فیملی کا ممبر ہے. یہ میں خود بناتا رہتا ہوں یہ فیملی, تو اس میں بالکل ایکوریٹ وہ پورے آتے ہیں. تو ومل جی کا وہ پوائنٹ تھا. اور سمن کیسے پتہ لگا, مجھے ذہن میں آیا کہ شاید ان کا نام سمن ہے کیونکہ ملن سمن نے گڑبڑ کر دی, اور پھر ایک سمن, یہ شپ فار لیس والا ایک بندہ تھا اس کا نام تھا سمن, تو میں نے کہا ان کا نام بھی ہوگا, بٹ ان کا نام ومل اوبروئے جی تھا. اور اتنے مزے کے آدمی دل جاتا ہے, وہ اوبروئے ہوٹل جو ہے نا بندہ ان کے نام کر دے. ٹھیک ہے جی, تو لوگ ہوتے ہیں زندگی میں بہت سارے ایسے پیارے آپ کو ملتے ہیں. ایک پوائنٹ تھوڑی دیر پہلے آیا تھا کہ جی ایک ویلیوبل چیزیں ہیں. ایک کام کی بات آپ کو بتاتا ہوں, غور سے سنیے گا, آج تک نہیں بتائی میں نے. اور کام کی بات یہ ہے, یہ کام جو میں ریڈیو آزاد پہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے کے نام سے آپ لوگوں کے پاس کرتا ہوں, یہ پچھلے 5 سال سے میں کر رہا ہوں. ملٹی نیشنل کمپنی اور ہیڈز جو ہوتے ہیں, جو کمال دنیا کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ میں یہ کام کرتا ہوں. اور اس یہ کام, یہی باتیں صرف انگلش میں کر کے ان کو, اور تھوڑا سا مزید ڈانٹ کر اور سختی کر کے ان کے ساتھ, اور صرف ایک چینج ہے اس میں, اگزیکٹلی یہی چیزیں. $40,000 اے ایئر سے لے کے $60,000 اے ایئر تک کا پیکج لیتے ہیں وہ لوگ, جو میں آپ کو یہ ساری چیزیں 12 سال سے فری میں دے رہا ہوں. ایک بات, دوسری بات, اس میں اور اس میں فرق یہ ہے, اس میں میں 2 گھنٹے آپ کے پاس ہوتا ہوں اور باقی آپ لوگوں کے پاس یہ آرکائیوز بن جاتے ہیں, اور آپ لوگ ٹیکسٹ کر لیتے ہیں یا اپنے ڈفرینٹ طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اور وہ لوگ, میں 24 آورز اویلیبل ہوتا ہوں. اٹ برنگز می ٹو دا پوائنٹ ویئر میگا جی نے آ کے کہا کہ سیلف ڈیولپمنٹ جو ہے وہ تو آن گوئنگ پروسیس ہے, وہ آج ہم نے کر لیا اور کل پھر وہ سچویشن آ سکتی ہے پھر. تو اسی لیے جو لائف کوچز بھی ہوتے ہیں نا, آپ نے اکثر سنا ہوگا آرگنائزیشنز بلاتی ہیں. اس شو میں جو ہو رہا ہے, اس کام کی کمپنیز ملینز آف ڈالرز دیتی ہیں اپنے امپلائیز کو آپ کی بات سنا کر مور ورک اورینٹڈ, آبجیکٹیو اورینٹڈ کرنے کے لیے, ٹائم مینجمنٹ کرنے کے لیے, مین مینجمنٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, کریٹیکل تھنکنگ کرنے کے لیے. یہ سارے کاموں کے لیے ان آپ کو بلایا جاتا ہے, اور آپ ان کے آگے بیٹھ کے 500 بندوں کو یا 200 بندوں کو یہ دیتے ہیں, اور اس کے آپ کو $lakhs ملتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کا پیریوڈک ان کو وزٹ ہوتا رہتا ہے, اور آپ ان کو کچھ فارمولاز دیتے ہیں, اور وہ فارمولاز بالکل بیسک ہوتے ہیں جو میں یہاں پہ آپ کو دیتا ہوں, اس سے 10 ٹائم کم دیتے ہیں وہ, کیونکہ ان کے پاس وہی ہوتا ہے اور اسی کے ارد گرد انہوں نے اپنی پوری زندگی بنائی ہوتی ہے. بٹ یہاں پر اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ میرے پاس جو سچویشن آتی ہیں وہ آرگنائزیشنز میں صرف 15-20-25 سچویشنز ہوتی ہیں, لیکن یہاں پہ عام بندے کی 500 سے زیادہ پوزیشنز ہیں اور پرابلمز اور سچویشنز آتی ہیں ان کے پاس. تو عام بندے کو اس علم سے دور رکھا جاتا ہے, صرف ان لوگوں کو یہ علم دیا جاتا ہے جو کہ پہلے سے پروڈکٹیو ہیں اور کسی جگہ پہ ہیں, اور تاکہ وہ اور زیادہ ایکسلنس اچیو کریں اور اوپر جائیں اور کمپنیز کو فائدہ ہو. ٹھیک, اور عام آدمی کو اس تمام بیسک نالج سے دور رکھا جاتا ہے تاکہ وہ صرف فالوور کا کام کرے, اور وہ صرف جو ہے ان چیزوں کو دور سے دیکھ کے اس کو فینٹسائز کرتا رہے یا ان لوگوں کے پیچھے لگا رہے, بجائے اس کے کہ یہ رب کا علم ہے جو حق ہے ہر بندے کا. اور رب کی آپ کو میں کمال ایک بات بتاؤں, وہ ایک عجیب طریقے کا کھیل ہے. وہ کھیل یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ شو جو آپ کو ملتا ہے, اس نے کتنے سینکڑوں لوگوں کی آن ایئر بھی, کئی لوگ آئے, ای میلز آتی ہیں, چیزیں ان لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ کام آپ پہ کر کے احسان کر رہا ہوں, कई लोगों को लगता है, मुझे बहुत सारा कितने लोग ऑन एयर आए, उन्होंने कहा जी आप क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं, नहीं समझेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, वो अपने हिसाब से चीज़ें देख रहे थे। लेकिन जिसको लगता है कि भाई ये कई लोग कहते हैं सब ब्लेसिंग, बहुत प्यार देते हैं, इससे देते हैं, मेरे लिए दुआएं करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि रब का काम जो है ना, वो इससे बहुत ऊपर का काम है। जिस काम से आपको सुकून मिल रहा है, वो ना देने से मेरा सुकून बर्बाद हो जाता है। सो मैं अपने सुकून की खातिर, खुशी की खातिर ये काम करता हूं, और उससे ट्रांसलेट आपके अब चीजें होती हैं। तो हम लाजिम व मलजूम है, इंडिस्पेंसिबल हैं एक दूसरे के लिए। ये चीज जब इंसान इन चीजों को, इससे फख्र नहीं आता है इंसान के भी अंदर, इससे एक्सपेक्टेशंस नहीं आती हैं, इसमें यह आता है कि मैं करता हूं तो मैं जीता हूं। आप सुनते हैं और कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो जीते हैं, और अपनी जिंदगी में अपना अपना काम करते हैं, और उसके बदले बाय प्रोडक्ट्स में रब ने जो वादा किया मेरे साथ, वो थोड़ा नहीं बेइंतहा मिलता है मुझको। तो ये कुछ चीजें, अगर हम इसको सिर्फ थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव होकर ऊपर से चीजों को देखना शुरू कर दें, ये शहर जिसमें लगता है इतनी ट्रैफिक है, सड़क के ऊपर हम खड़े हैं, जब आप जहाज पे जाके उस शहर को ऊपर से देखते हैं तो छोटा सा है, और शहर वो यही सड़क नजर ही नहीं आ रही है, और यही ट्रैफिक बस एक लाइन है, और रात के वक्त सिर्फ बत्तियां हैं ट्रैफिक की, लाइट्स, दिस नथिंग। और नीचे से आपको लगता है कि मैं एक आदमी हूं और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरे बगैर घर नहीं चलेंगे, मेरे बगैर कंपनीज नहीं चलेंगे, मेरे बगैर ये मोहब्बत करने वाला कुवालियां या वाले कहाँ जाएंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा। जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको पता चलता है 500 लोग ऊपर आपके साथ और हवा में हैं, उन सबके यही मसाइल हैं, उन सबकी यही सोचे हैं, और नीचे इतने हजारों लाखों करोड़ों में लोग हैं जिनके यही मसाइल हैं, तो मैं कहाँ हूं, तुम ही तुम हो, मैं कहाँ हूं, आप भी तो सोचते होंगे ना ये। तो फिर प्राउड इंपॉर्टेंस ड्रामा क्या है, ये कुछ नहीं है, इट्स ऑल इन द हेड। लेट्स सी, रेडियो आजाद, यू ऑन द एयर।
नमस्कार आजाद सर।
नमस्कार, नमस्कार, कैसी हैं आप?
आई एम गुड सर, थैंक यू सो मच, आपने उस दिन का टॉपिक फिर आज रखा।
आप इतने प्यार और इतनी इज्जत से मुझे सर कहती है, मुझे पहली दफा ना फील होने लगता है मैं वाकई मैंने कुछ स्टेटस अचीव कर लिया है। सुनाई
नहीं, मैंने आपसे कहा था आप एकदम टीचर की तरह रहते हैं, हम लोगों को आदत है, हम टीचर्स को सर ही बोलते हैं।
मैं, सर है। मैं खुद हर एक बंदे को सर कह रहा होता हूँ। मैडम जी सुनाइए हुक्म।
जी जी, मैं ये सबसे मेरा जो इन्फरेंस है आपके शो से वो ये है कि जितने सवाल जवाब हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कर सकते,
पहले ये बताइए आप कितने अरसे से सुन रही हैं?
मुझे सर आई शुड से अबाउट अ मंथ एंड अ हाफ।
मंथ एंड अ हाफ, ओके। पॉइंट्स शुरू कीजिए।
जी पॉइंट्स, मेरा पहला तो ये है कि मैंने आपका कल का शो सुना, उसके अंदर आपने एक बात बोली कि इफ समबडी इज इवन प्रिटेंडिंग टू बी यू नो गुड एट व्हाट दे डू और बीइंग कॉन्फिडेंट अबाउट वेयर दे आर इन लाइफ एंड दे आर नॉट एंड यू कैन टेल दैट दे आर नॉट मे बी बाय योर अंडरस्टैंडिंग यू शुड स्टिल गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट। आपने गुलनाज के शो में ये बात बोली थी और फ्राइडे के शो में आपने कहा था कि हमें अपने फ्राइडे नहीं आई थिंक थर्सडे की जर्फ के ऊपर डिपेंड करते हुए अगर हमें जो मिलता है वैसा का वैसा लौटाना हमारी उसमें हमारी क्या बात हुई, उसको सुधार के दीजिए वापस जो भी दुनिया जो आपको दे रही है उसको। लेकिन कुछ हफ्ते पहले आपने ऐसे आई डोंट रिमेम्बर द कंटेक्स्ट बट देयर वाज अ रेफरेंस वेयर यू लिस्टेड आउट द टाइप्स ऑफ पीपल हु बेसिकली सक द एनर्जी आउट ऑफ यू एंड हु इट माइट नॉट बी अ बैड आइडिया टू स्टे एट एन आर्म्स लेंथ अवे फ्रॉम। सो हाउ डज दिस टाई अप?
बहुत ही सिंपल है। पहली बात, जो आदमी, वो मैंने ये कहा था उससे पहले ना, बड़ा अच्छा आपने कहा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले सेंटेंस शुरू करने से पहले मैंने कहा था आप एक पर्टिकुलर नेचर के आदमी है, जैसे मैं हूं। अब इस जमाने में आके अगर आप मुझसे रोज ए बी सी डी पूछेंगी ना कि ए बाद में क्यों आ रहा है और बी पहले क्यों नहीं आ रहा, ठीक है पहले तो मैं इस जमाने में पीएचडी करने के बाद आपको मैं कोई मतलब है, मैं आप मास्टर्स में हम दोनों या बैचलर्स में बैठे हैं तो पीएचडी की कोई बात हम करना चाहेंगे बजाय कि तो बेसिक्स हैं सबको आने चाहिए। अब आपकी जो एक नेचर है फर्ज करें, उस नेचर को सामने रख के मैंने ये कहा था कि अगर ये 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 लोग हैं तो मैं इनसे दूर रहता हूं। जरूरी नहीं कि ये लोग गलत हों बुरे हों, बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा देना है तो, लेकिन इस मौके जिस टाइम एंड फ्रेम में अभी मैं जिस माइंड सेट और फ्रेम में जिस जगह पे हूं, मेरे पास वक्त कम है जाया करने के लिए, तो मैं इन 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 लोगों से दूर रहता हूं ताकि मैं इस थोड़े से वक्त को बेहतर तरीके से यूज कर सकूं। लेकिन दूसरा कोई और बंदा है, इफ ही कैन पुट अप विद ऑल दीज पीपल एंड ही स्टिल वॉन्ट्स टू लर्न देन ही शुड। और एक और बात, इनमें से कोई भी ऐसा बंदा है जो कोशिश कर रहा है टू गेट बेटर फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए हमेशा याद रखिएगा रब के पास सबसे बड़ा आदमी वो है जो कोशिश कर रहा है, کوشش کے نمبر سب سے زبردست ہیں. ہماری ٹیم میں جو پروگرامر اچھا نہیں ہے فرض کریں, لیکن وہ کوشش کر رہا ہے, وہ ہر وقت پوچھتا رہتا ہے, وہ ہر وقت بات کرتا رہتا ہے, وہ چیزیں چینج کرتا رہتا ہے. ہی از مچ مور کلوزر ٹو مائی ہارٹ دین دا بیسٹ پروگرامر دیٹ وی ہیو, بیکاز اس کا سیچوریشن پوائنٹ آ گیا, وہ شاید آگے کچھ نہیں سیکھ رہا, لیکن یہ والا کوشش کر کے آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے. تو دو ڈفرنٹ سینیریوز میں, اسی لیے میں کہتا ہوں آئی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ رائٹ اینڈ رانگ, ایبسولوٹ رائٹ اینڈ رانگ, آئی ٹاک اباؤٹ دوز گرے شیڈ جس کے بیچ میں زندگی ہوگی, اور سچویشنل رائٹ اینڈ رانگ کیا ہوتا ہے. آپ کون ہیں, کہاں ہیں, کیا چاہتے ہیں, ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اگلے بندے کے ساتھ آپ نے جیسے بھی رکھنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. سمجھ آئی؟
جی.
نو پرابلم. اس طرح کے بندے تو چاہیے مجھ کو. یہی تو اصل میں سوال پوچھنے سے سکرات بنا تھا, جواب تو نہیں تھے اس کے پاس. ٹھیک ہے, اور کٹ گئے آپ, کیسے کٹے ہیں مجھے نہیں پتا, دوبارہ آ جائیے گا, میں انتظار کرتا ہوں. ریڈیو آزاد, یور آن دی ایئر.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام میم, کیسی ہیں؟
میں ٹھیک ہوں سر. ماریا بول رہی ہوں.
جی ماریا جی, آپ نے کیوں ہمیشہ بتانا ہوتا ہے میرا پتر تو ہی ہے ماریا, سب کو پتہ لگ گیا, بتا.
نہیں وہ عادت ہے نا, ہمیشہ بتاتی ہوں کہ
میں تو اس طرح بتانے لگ چوں کہ میں آپ کو آگے پوائنٹ دیتی ہوں, سب کو پتا ایگزیکٹلی یہ ماریا ہے اور اس سے معصوم اور کوئی نہیں ہو سکتا. چلو شروع کرو. جی
جی, تو لاسٹ ٹائم میرا ایک پوائنٹ رہ گیا تھا, تو میں وہ پوائنٹ بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے آپ کے شو سننے اور جب میں نے ریڈیو جوائن کیا, اس سے میں نے ایک چیز لرن کی کہ جب ہم ریئلائز کر لیں کہ ہم جتنا بھی اچھا کریں وی آر ناٹ پرفیکٹ, اور ہم اور سیکھ سکتے ہیں. اگر ہم یہ چیز کو ریئلائز کر لیں گے تو آئی فیل کہ لائف بہت اچھی اور سکون میں آ جائے گی. اگر کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کا مطلب دے آر پرفیکٹ اور ان کو ان کے اندر کوئی خامی اور غلطی نہیں ہے, تو وہ آئی تھنک وہ دوسروں کے لیے بھی مشکل بن جاتے ہیں اور اپنے لیے بھی وہ زندگی مشکل بنا لیتے ہیں.
ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, بہت اچھا. صرف ایک بات سیکھی اتنے مہینوں میں, تو میں پرائم ٹائم میں, آپ نے کب سے شو سن رہی ہیں؟
میں آپ کا جنوری سے سن رہی ہوں.
جنوری سے لے کے اب تک آپ نے مجھے نا فل اپنے فل بلوم میں, یہ اسپیشلی جو پچھلے دو مہینے میں تھا نا, کہ میں فل بلوم میں ہوں ایز اے پروگرامر, اور میرے انسٹرومنٹ اتنا زبردست ہوا, جو چیزیں آ رہی ہیں وہ میں دیے چلا جا رہا ہوں, کیونکہ مجھے جب ابھی خیال آ گیا کہ اس کے آرکائیوز بنا کے جمع کرنے ہم نے, کیونکہ بندے کا پتہ نہیں چلتا. تو فل موڈ میں جب میں ہوں تو صرف یہی سیکھا ہے؟
نہیں, اور بھی بہت کچھ سیکھا ہے, لیکن یہ مجھے اور ایک چیز یہ بھی سیکھی کہ اگر آپ کوئی غلطی کرے تو اس کو اگر ایکسیپٹ کر لو تو وہ انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا, وہ بلکہ اور اپنے اندر وہ اندر بڑا ہوتا ہے, کہ اس کو پتا ہے کہ اس نے غلطی کی اور وہ آئندہ سے وہ بندہ فیل کرتا ہے وہ دوبارہ نہیں کرے گا.
ویری گڈ پوائنٹ, ویری گڈ پوائنٹ. تیسرا,
ابھی دو ہی کافی.
یہ دونوں جو آپ نے پوائنٹ بتائے ہیں, ریڈیو آزاد میں جتنی آپ سے پیار محبت کیا جاتا ہے, آپ کو فیلنگ آتی ہے اس کی؟
جی بہت آتی ہے.
انہی باتوں کی وجہ سے وہ آپ کو پیار ملتا ہے, سمجھیے.
وہ پیار جو ہے وہ اور انکریجمنٹ ہے, کہ اور فیل ہوتا ہے کہ اچھا اور اچھا کر سکتے ہیں. آپ کا شو سنتی ہوں, عائشہ جی نے جتنا انکریج کیا ہے مجھے, کیونکہ آئی نو کہ میں خود بھی ریلائز کرتی ہوں کہ جب میں شروع میں جس طرح بولتی تھی کیا کرتی تھی, بٹ وہ چیز ریلائز کر کے اگر اس کو بیٹر بناتی ہوں, وہ میں نے ریڈیو سے بہت سیکھا ہے.
بہت اچھا. اور یہ جو آپ جو بھی مل رہا ہے نا آپ کو, آپ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا کر رہے ہو کہ یہ مل رہا ہے, اسی لیے کوشش کر کے اس کو فگر آؤٹ کر لو اگر کسی بھی انوائرمنٹ میں, کہ اس انوائرمنٹ میں عزت پیار محبت کس کو ملتا ہے, اور اسی انوائرمنٹ کے حساب سے جب آپ اپنے اندر چینجز لے کے آنا چاہو تو زندگی اور بھی آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, نائس آف یو میم, تھینک یو ویری مچ. کوئی ہے ہمارے ساتھ؟ ریڈیو آزاد, یور آن دی ایئر.
السلام علیکم سر.
سر وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟
یہ زبردست سر, اور آپ فل بلوم کی بات کر رہے ہیں تو میں واقعی کہوں گا کہ پچھلے جو دو ماہ سے کام چل رہا ہے وہ بڑا بہترین ہے, اسپیڈ اپ ہوا ہوا ہے, اور ریفائنمنٹ کا پروسیس اور فلٹریشن کا پروسیس جو ہے وہ بہترین چل رہا ہے.
مجھ سے نا پچھلے دنوں ایک تو میں نے انٹرویو ایک کیا تھا, تو وہ بندے نے میرے پہ ایک چوٹ ماری, اور اس کے بعد ہماری ٹیم کے بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا نا چہرہ جو ہے وہ چمک رہا ہے, گلو, پتہ نہیں کیا لگا رہے ہیں آپ اپنے چہرے کے اوپر. ٹھیک ہے, تو ان کو میں نے کہا کہ یہ وہ روشنی ہے جو دیا بجھنے سے پہلے آخری وقت میں بہت زور مار رہا ہوتا ہے. فل بلوم جو دیے کا ہوتا ہے, جو فل بلوم اگر آپ کینڈل کو دیکھیں نا بجھنے سے, میں نے دیکھا ہوا ہے کینڈل بجھنے سے پہلے بہت زور لگاتی ہے, پھڑپڑاتی ہے, تو بیسیکلی یہ وہ والا بلوم ہے. بجھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں جتنی روشنی بانٹ رہی ہے بانٹ جاؤں.
सर बस सर ये बात जो वो सिंगर आए हुए थे पाकिस्तान से उनके इंटरव्यू के दौरान हुई थी।
हाँ जी बिल्कुल, आज आप भी फुल ब्लू में रेडियो सुन रहे हैं, गुड।
धक्का लगेगा तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता।
हाँ नहीं, धक्के के आगे आपने उस धक्के के साथ करना क्या है ना, वो धक्का बोल के पिछले बंदे से लड़ भी सकते हैं आप। जब धक्का लगता है तो उस धक्के वाले जिसको लगा है वो करता क्या है उसका असल में, उससे पता चलता है।
सर ये तो धक्का देने वाले को भी पता होता है ना कि यार इस बंदे को धक्के की जरूरत है, इसको धक्का दिया जाए तो भी चल पड़ेगा।
हाँ चलेगा, वो ढूंढना पड़ता है उसके लिए, बड़ा एक तरीका होता है उसके लिए, एक बंदे के जहन में जगह लानी पड़ती है पहले, कि किसी को मैं कहता हूँ किसी को डांटने से पहले उसके जहन में जगह बनानी पड़ती है कि आप कौन है, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ताकि वो उसको वैल्यू समझे और समझ भी सके कि वो कौन है, वरना जगह बनाए बगैर कोई भी काम किया जाएगा ना, एक कमाल किस्म का भी आदमी और एक गलत जगह पे ऊपर उसने वो बात कर दी है तो वो अपने लिए मुसीबत बना लेगा। पॉइंट्स हैं कोई?
सर पॉइंट ये था कि जिस तरह भी बात हो रही थी, मैंने पिछली दफा जब मैं आया था लास्ट वीक जब हमने ये फर्स्ट पार्ट किया था तो उस वक्त बात हुई थी कि एनवायरनमेंट की बात हो रही थी, आपने पूछा था तो मैंने कहा था कि एनवायरनमेंट मैंने अपना चेंज किया और एक बेहतर जगह में चला गया तो उससे जो है काम चेंज हो गया। तो दूसरी बात ये कि अब जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नेगेटिव थे,
हर जगह होते,
तो मैंने सोचा कि जनाब अब ये करना है कि यहाँ भी छांटी करनी है लोगों, यहाँ भी कटिंग जो है ना प्रोसेस रखना है, अदरवाइज यहाँ भी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो जो देसी बंदे थे उनमें वही बात होती है कि फिजिकली तो वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं लेकिन मेंटली वो कुछ नहीं सीखते, इवन के वो 10 साल 20 साल 30 साल एक जगह अच्छी जगह गुजार भी लें लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
बिल्कुल ऐसा ही,
तो फिर लोगों की जो है ना वो अपना एनवायरनमेंट बेहतर रखने के लिए अपने इर्द गिर्द के लोग जो हैं उनको सीधा रखना, उनसे सीधी कम्युनिकेट करना, सीधी बात करना और उनको बता देना कि जनाब मैं ये हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये करता हूँ, अगर आपने चलना है तो चले, नहीं चलना तो आगे बढ़े।
एक ये जब जिस बंदे को बात समझ आएगी ना उसकी जिंदगी में बहुत सारा टाइम एंड एफर्ट वेस्ट होने से, एनर्जी वेस्ट होने से बच जाएगी। दो चीजें, एक जो लोग आप एनवायरनमेंट में लेके आते हैं उनके ऊपर काम करना और उनको ऑब्जेक्टिव रखना, ये आपका काम होता है जो भी उस एनवायरनमेंट में होता है, और दूसरा लोगों को रिप्लेस करते रहना। बेहतर से बेहतर से बेहतर बंदा जब आपकी जिंदगी में आएगा तो आपका जो असल आपका इंस्ट्रूमेंट है ना वो उसको और ज्यादा बेहतर तरीके से उसके ऊपर काम होगा। ठीक है सर, नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आसिफ साहब थे जी ऑल द वे फ्रॉम चाइना, आजकल चाइना बहुत मेहरबान है, पाक चीन दोस्ती, वांग सोए वांग सोए। कोई है हमारे साथ रेडियो आजाद, यू ऑन द एयर। सर वालेकुम सलाम।
मैंने कहा सर का वो जो है आज लकब जो आपको मिला है उसको बरकरार रखे
सर, लेकिन उससे पहले जो बंदा ये वाला जो लकब देने वाला है वो आज बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है।
नहीं असल में मैं आपसे कहने लगा था कि खुदा का वास्ता है अपने ये लिस्टनर्स को बोले कि मैं इसका वक्त चेंज करने की इजाजत चाहता हूँ कि कुछ लिस्टनर्स आती रात को जाके बैठे हुए होते हैं।
मैं अभी 4 से 6 का जो टाइम है ना एक्चुअली सबसे ज्यादा लोगों तक बात पहुंचाने के लिए टाइम ही ये रखा गया।
बिल्कुल समझता सर, और ये कुछ तो सुकून वाला टाइम होता है, कुछ लोग थके हुए पहुंचते हैं जा रहे होते हैं तो सुनने वाला टाइम यही होता है। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने कहा क्यों लोग का दिमाग खराब कर दिया।
देख लो, मैंने ये दसो कि तुसी भी कुछ सीखा कि नहीं, तुसी सिखांदे ही रहे हो सन।
सर बिल्कुल सीखे,
कुछ 3-4 चीजें जो हाईलाइट हुई हैं शो में।
इतना लंबा जो है वो आज वाकई आप फॉर्म में आए हैं, वो हर पॉइंट वो ऐसे लगता है। सबसे पहली तो यार जो बात है हमेशा जो मैं कहता हूँ आपसे, मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो कोई बंदा बैठ के ना मेरे साथ ही बातें कर रहा है तो वो जो, और ऊपर से एक बंदे ने इतनी चीजें एक्सपीरियंस की नहीं है कि ऐसा लगता है आपने हर बंदे की जिंदगी के अंदर झांका हुआ है, हर कोई ना कोई वो किसी ना किसी को कोई ना कोई चीज चोट कर जाती है। और आजकल की जो जिंदगी है वो तकरीबन सिमिलर ही है, एक ही दुनिया में रह रहे हैं तो वो हालातों वाकयात भी एक जैसे हैं। बहुत अच्छा, पिछली दफा ऐसे ही हो रहा, मैं जो ये हमेशा ही होता है, पिछली दफा की बात नहीं कर रहा हूँ कि एक जगह पे मैं फंसा हुआ और मुझे उसका जवाब नहीं मिल रहा, तो ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने एक बंदा रखा हुआ है उधर टेक्सास में, वो उधर से आपको मैसेज डिलीवर कर रहा है कि हाँ जी सवाल आप अल्लाह से कर रहे हो तो अल्लाह आपको किस तरीके से आप तक मैसेज पहुंचा देता।
वो जो आपने मुझसे बात डिस्कस की थी ना वो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता था और आपकी जिंदगी अजाब हो सकती थी और आप करने जा रहे थे और फैसला आपका ही था, किया आपने जो भी किया, लेकिन कमाल वो एक्चुअली आपने किया था कि मैंने, मुझे समझ नहीं आई कि ये बंदा मान कैसे गया ये बात, हालांकि बाकी सारी चीजें सब प्लान्ड था, हर चीज थी, आपने सिर्फ पैर रखना था اور صرف آپ نے مجھ سے بات کی, میں نے آپ کو صرف دو پوائنٹس دی اور اس کے اوپر آپ نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا, اس کے بعد سے زندگی کیسی ہے ابھی؟
سر الحمدللہ وہ بخیر.
بڑی بات ہے جو آپ نے, نہیں اکثر میں نا ڈیسیجن جو ہے وہ کرنے والے کا ہے, تو کمال جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے اندر ہے کہ کر لیا آپ نے وہ, میں خود حیران ہوں کہ وہ کیسے کیا آپ نے اور اتنا اچھا اس کو ہینڈل کر لیا, زبردست. میں نے سکھائی
کبھی نا, وہ بھی آپ میں پچھلے شو میں بھی تھا, اس میں بھی تھا, پہلے میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکا, میں نے بعد میں سنا. اس میں جو آپ نے کہا نا کہ آپ جب ضرورت سے زیادہ سوچنے لگ جاتے ہیں یا آپ اپنا ڈیسیجن نہیں لیتے ہیں تو پھر نقصان آپ کو اٹھاتا ہے. جس ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا وہ کہ جب تعلیم حاصل نہیں کرتا بندہ تو پھر ساری زندگی آگے رلتا رہتا ہے, اور وہ جو بھی آپ کے تو اگر نہ لیتا تو ظاہری سی بات ہے تو بھی مار تھی.
بڑی ہے جو, بہت بڑا جو آپ کا ڈیسیزن ہے. ایک تو نائس آف یو بردر, تھینک یو ویری مچ. آل دا وے فرام انگلینڈ ہمارے بھائی صاحب تھے جی, لسنر ہے شو کے کافی سالوں سے, اور ان کے مزے کی بات کیا تو میں اپنے پیو دی کدی نہیں سنی, میں آپ کی سن لیتا ہوں, مہربانی ہے ان کی. لیکن جو انہوں نے ڈیسیزن لیا, کوئی بھی شاید میں بھی ہوتا تو نہ لے سکتا, لیکن انسان کو پریکٹیکل اور ریئلسٹک اور ٹروتھ فل بات کرنی چاہیے. میں ان کی جگہ ہوتا میں وہ ڈیسیزن نہ لیتا کیونکہ سب پلان ہو چکا ہے, لیکن انہوں نے پتہ نہیں کیسے ان کے دل میں رب نے ڈالا اور اس کے بعد سے ان کی زندگی بہت بہتر ہے. میں نے صرف مشورہ دیا, سم سمجھایا تھا کہ اس کو یہ کرنے سے یہ 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 ہو سکتا ہے, اور انہوں نے سمجھ بھی لیا اور ایکٹ بھی کر لیا, اور میرے ذہن سے تھا کہ نہیں کریں گے وہ, انہوں نے کر بھی لیا. یہ کمال جو ہے وہ بیسکلی آپ کا, میرا کام تھا صرف آپ کے سامنے اینگل رکھ دینا کہ یہ چوائس ہے, یہ چوائس ہے. نائس آف یور بردر, تھینک یو ویری مچ. کوئی ہے ہمارے ساتھ ریڈیو زاجی رون دیئر؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. آپ کے لیے مجھے آواز بدلنی پڑتی ہے فوراً.
جی
آپ کے لیے مجھے فوراً آواز بدلنی پڑتی ہے, بولے.
اچھا پتہ ہے ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ جو آپ ہمیں اتنے سارے پروگرام اور گائیڈنس اور سو مینی تھنگس آپ بتاتے ہیں, اور واقعی کہ کتنے لوگ ہیں جس میں لاکھوں ڈالر انہی باتوں سے کما رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے سب سے بڑی جو آپ کے اندر جو ہم مطلب میں پرسنلی جو لائک فیل کرتی ہوں, جو مطلب مجھے اٹریکٹ کرتا ہے, یہ آپ کا پرخلوص ہونا, اتنا بے لوس ہونا. دیکھیں یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ آپ مطلب ہمارا کوئی ایسا کوئی نہیں, چلے ایک ماں وریڈ ہوگی, باپ وریڈ ہوگا, بھائی ہوگا, آپ کا ہمارا کیا ہے, لیکن آپ ہماری مطلب بیٹرمنٹ کے لیے اتنے وریڈ ہوتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ ہم چینج ہو. لائک آپ یقین کریں دس از آسم, کوئی کسی کے لیے اتنا باڈر نہیں ہوتا. پیپل آر جسٹ میکنگ منی آؤٹ آف اٹ, دے ڈونٹ کیئر کہ لوگوں پہ اس کا اثر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اور سیکنڈلی آپ کو پتا ہے جب یہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ جو جتنے بھی اسکالر یہ ہوتے ہیں, آپ بلیو کریں میں بالکل نہیں سنتی, بیکاز انہیں پے کیا جا رہا ہے, وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, ان میں خلوص نہیں ہے, انہیں پیسہ دکھ رہا ہے سامنے ان کو, تو اس لیے آپ کا تو مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا.
تو پیار کرتے ہیں نا لوگ, تو ایک مزہ ہے کہ آپ کو میں بات بتاتا ہوں, کئی لوگ ہیں جن کو اس آواز سے سکون ملتا ہے, کئی لوگ ایسے ہیں جو کانوں میں لگاتے ہیں نا. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ کا شو سنتے سنتے میں سو جاتی ہوں یا سو جاتا ہوں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں شکر کریں خدا, اور میں ہمیشہ ایک بات پوچھتا ہوں, ہیڈ فونس لگا کے سنتے ہیں؟ اگر جواب ہے ہاں تو آپ سو جائیں گے بڑے آرام سے. یہ تو جس کو نیند نہیں آتی اس کے لیے, میں پاکستان میں یہ ٹرائی کر چکا ہوں, وہ میں نے کہا ہیڈ فون لگائیں اور تھوڑی دیر میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو تھوڑی دیر میں
جی دوسری بات مجھے آپ کی, ایک تو جو آپ نے جو سیریز ساری کی, آپ یقین کریں میں پرسنلی لائک کچھ دنوں کچھ ہو گیا تھا, تو میں آپ اداس ہو جائیں, آپ سیڈ ہیں, آپ ڈپریس ہیں, سب سے اچھا سولوشن ہے یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ, آپ کا کوئی شو بھی کلک کر لو, اینی شو, یعنی آپ کا ایوری شو جو ہے وہ اتنا ہر سچویشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, اور آپ یقین کریں اتنا سکون ملتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو پتہ نہیں, کہتی ہے کہ لفظ جو ہیں وہ آپ کے زخموں کو بھر دیتے ہیں, اور آپ ہمارے بہت سارے ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے لفظ اور آپ کے ورڈز ہوتے ہیں وہ ہمارے پرابلمز کو ہیل کرتے ہیں.
نائس آف یو میم, تھینک یو ویری مچ. اس کے لیے نا ایک ٹریک ہونا چاہیے یہاں پہ الفاظوں کی طرح. اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات ضرور بتاؤں, کئی لوگوں کے لیے میری جو آواز لوگوں کو لگتا ہے ان کی سکون, مجھے ملتے ہیں لوگ کہتے ہیں جس آواز میں سکون بہت ملتا ہے, کوئی لوگ کہتے ہیں جی اس سے تھراپی ہو جاتی ہے, کوئی لوگ کہتے ہیں جی ہم آپ کا پوائنٹ آف ویو سنتے ہیں تو کم از کم دماغ سے اس وقت کے لیے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں, کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ کا نشہ ہے آپ جو لگا دیتے ہیں لوگوں کو. لیکن جو ایک بندہ مجھے ملا اس نے کہا سر میں آپ کی آواز سنتا ہوں نا تو میرا رونا بند نہیں ہوتا. تو کس کس قسم کے لوگ ہیں اور کس کس قسم کے ایکسپیرئنس ہیں ان کے, اور کیا چیز ہے جو یہی آواز جو اگر کسی کو آج انجوائے کراتی ہے ایک بندے کو, اور ایک بندے کے لیے وہ درد اور تکلیف بن جاتی ہے اس کی, اور اس کا رونا بند نہیں ہوتا. سو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ زندگی میں اور بہت لوگ ہیں, جب تک ہم اپنے آپ سے باہر نہیں نکلتے ہیں تب تک ہمیں یہ دنیا کی اس کے کمال ہونے کی بالکل سمجھ نہیں آتی. کوئی دیوانہ کہتا ہے, کوئی پاگل سمجھتا ہے, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी बस अंबर समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है।
किसको सोचूं मैं, मेरी सोच पे तुम बैठे हो, सांसें जहां बनती है मेरी, उस मूड पे तुम रहते हो।
तू मेरे अल्फाजों की तरह, लिहाजों की तरह, गुनगुना लूं आजा मैं तुझे, तू मेरी आवाजों की तरह। उस रब की तरह दिखते हो, सांसें जहां बनती है मेरी, उस मोड़ पे तुम रहते हो। तुम मेरी अल्फाजों की तरह, तुम मेरे लिहाजों की तरह,
जनाब कोई है हमारे साथ रेडियो आजी रौंदी। जी सर।
जी अस्सलाम वालेकुम
सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम
जी। अजाज सर, मैंने ना आपका प्रोग्राम सुनना शुरू किया, एक सिंपल रेडियो ऐप है उससे मैंने रेडियो ढूंढ रहा था, 1:45 AM का टाइम था, तो मैंने पहले आयशा जी का प्रोग्राम ढूंढा, शुरू किया सुनना, उससे फिर आपकी तरफ आ गया। मुझे जो मैं आपको बताऊं, मेरे पास इतने अल्फाज नहीं है जो अभी आपने पहले बात किया ना, कि जो पहले छोटी सी जिंदगी में अगर पहले आप साल सीख लेते हैं तो रेस्ट ऑफ द लाइफ आपकी अच्छी गुजर जाती है। हमारे साथ ये हुआ था कि जो मैंने जिंदगी स्टार्ट की तो मैंने कुछ और सीखा था, ठीक है, वो मैंने जवानी का जो टाइम था, जो अच्छा वक्त था, उसको दूसरी जगह पे लगा के अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आपका प्रोग्राम सुनना शुरू किया तो मेरी लाइफ असल पॉइंट पे आ गई, मतलब मैं खुश हूं। मैंने आपसे बेसिक लाइफ से लेकर ताप की जो लाइफ है वो मैंने सीख लिया। अगर आप मुझसे, मैं आपको पॉइंट बताता जाऊं ना, आवर्स आवर्स मैं आपके आपके शो से जो मैंने सीखा हुआ है बेसिक से लेकर एंड तक, वो मैं आपको बता सकता हूं। इसलिए और इसके अलावा मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपके शो के मुताबिक कोई ऐसी बातें बता सकूं कि कितना अच्छा है। आप इससे समझ लें कि मेरी जिंदगी टोटली चेंज हो गई, और उसकी वजह से मेरी फैमिली, मेरे पाकिस्तान में जो फैमिली है, हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, बहुत बड़ी फैमिली है, उनके सब जो बच्चा लोग हैं, मैं आपसे बातें सीखता हूं तो आपकी वजह से वो पाकिस्तान में मेरी पूरी फैमिली में वो जा रही है, और वो लोग इसको आहिस्ता आहिस्ता फॉलो कर रहे हैं।
सर बस सर, ये पेशेंस जो होता है ना बंदे में, जब रिजल्ट्स आने से पहले काम अमल डालना, बीज डालना और फल खाना, उसके बीच का जो टाइम है ना उसमें सबर करना और अपने काम से लगे रहना और गोडी करते रहना और मौसम का ख्याल रखते हुए दरख्त का और उस बीज का ख्याल रखना, जो भी ये करेगा रब का वादा है, रब का वादा, कोई बंदे का वादा थोड़ी है जो बदल जाएगा
जी।
نائس آف یو سر، تھینک یو ویری مچ، آپ آن ایئر آئے اور آپ نے اپنا پوائنٹ دیا، سو گریٹفل، تھینک یو ویری مچ. یہ جو دو چار لوگ ایسے آتے ہیں جی سال میں ایک دو چار دفعہ اور باقی ای میلز میں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے شو میں یہ جتنی بھی جان ہے نا، اس میں بہت جان مارنی پڑتی ہے، بہت جان ڈالنی پڑتی ہے. دو گھنٹے کے اس شو میں جتنی انرجی آتی ہے یا جتنا زندگی کا مقصد ملتا ہے، دو گھنٹے کے بعد اتنا ہی جو ہے کندھوں پہ، ذہن پہ پریشر ہوتا ہے، اور اس کو الیویٹ کرنے کے لیے پھر اس کے لیے سوئمنگ کرنی پڑتی ہے اور جسم کو مضبوط کرنا پڑتا ہے. کیونکہ جب روح جو ہے نا، وہ میں کل ہی اس میں شو کر رہا تھا نا، فائٹر کا جو جسم ہے، فائٹر کی جو سوچ ہے، وہ فائٹر کا جسم بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا مائنڈ بہت اسٹرانگ ہے لیکن جسم کمزور ہے، کسی کا جسم بہت اسٹرانگ ہے اور مائنڈ کمزور ہے. جسم اسٹرانگ تھا، یہ جو ہمارے افریقن امیرکن بھائی ہیں، 400 سال تک اتنا مضبوط جسم ہونے کے باوجود صرف ذہن میں غلامی ڈال دی گئی. 400 سال لگے ان کو غلامی سے باہر نکلنے میں. اور سب کانٹیننٹ میں حکمران کرنے والوں کو جب سبمٹ انہوں نے جب کیا، اور اپنی غلطیوں اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی وجہ سے جب وہ ان لوگوں کے اوپر ان سے 500 ٹائم بلکہ 1000 ٹائم کم بندے جو تھے وہ لوگ آگئے، بلکہ 500 بھی بہت ہے، 350 million پیپل سب کانٹیننٹ میں، 350 million لوگ تھے. اس وقت امریکہ کی آبادی 350 million ہے. سو 350 million لوگوں کے اوپر جب گورا صاحب آئے تھے تو وہ 10,000 تھے، اور جب اینڈ تک وہ 200 سال حکومت کرتے رہے آلموسٹ ہم پہ، تو اس پہ 1,00,000 بندہ تھا، بس 1,00,000 بندہ. اور دوسری طرف 350 million، یہ ہوتا ہے جب آپ کی سوچ انٹیگریٹڈ نہیں ہوتی، یہ ہوتا ہے جب سوچ ہی نہیں ہوتی، یہ ہوتا ہے جب لوگوں کے ذاتوں کے پاتوں کے مذہبوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں. پھر 100-200 سال میں 3 generations کم از کم غلامی میں برباد ہوئیں. یہ ہوتا ہے سوچ کو، پاور کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے سے اس کا کیا، ایک اسپارک رہ جاتا ہے، باقی کچھ نہیں ہوتا آپ کے اندر. وہ بھی اس لیے کہ رب کے بندہ ہونے کی وجہ سے ہم ایک ڈیوائن اسپارک ہے. لیکن جب یہ جڑ جائے گا، ایک انگلی آپ کسی کو ماریں گے انگلی توڑ بیٹھیں گے آپ، لیکن اگر اسی کا مکہ بنائیں گے اور طریقے سے یوز کرنا سیکھیں گے، اور صرف جھٹکا دے کے بھی آپ جو ہے نا ہاتھ کی ہتھیلی سے بندہ گرا سکتے ہیں، لیکن کیسے، وہی تو سیکھنا ہے، یہی تو سارا کام ہے. اور یہ ہم جو سمجھ رہے ہیں نا ہر بندے کی علیحدہ علیحدہ جنگ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم سب ایک ہی لڑائی میں ہیں. صرف فگر آؤٹ یہ کرنا ہے کہ سائڈ کون سی لینی ہے. یہ آدھے تیتر آدھے بٹیر اس سے بنا کے رکھنی ہے، اس سے بنا کے رکھنی ہے، یہ نہیں کہنا، وہ نہیں کرنا، سیف پلے کرنا ہے، اس سے کہیں نہیں پہنچ پائیں گے آپ. یا آپ کو تیتر بننا ہے یا بٹیر، یہ سمجھنا، یا گھوڑا یا گدا، یہ بیچ کا کوئی جانور نہیں ہے ان دونوں کہ جی خوبصورتی گھوڑے والے چاہیے اور ہارڈ ورک جو ہے وہ ہمیں گدے والا چاہیے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ قدرت کے قانون کے خلاف ہے. تو اس کو فگر آؤٹ کرنا ہے. اینڈ وی آر آل ان دس ٹوگیدر، چاہے وہ کوئی ریڈیو آزاد کی ٹیم ہے، چاہے وہ کسی آرگنائزیشن کی ٹیم ہے، چاہے وہ گھر کی ٹیم ہے، چاہے وہ کمیونٹی کی ٹیم ہے، وی آر آل ٹوگیدر. اور جو جتنا ڈالے گا اس کو اتنا رزلٹ ملتا ہے. اس سے نفرت کرنا، اس سے لڑائی کرنا، اس کی طرح بننے کی کوشش کرنے سے آپ نہیں بن پائیں گے وہ، جب تک آپ وہ ڈالیں گے نہیں. جب آپ کا کنٹریبیوشن بڑھتا جائے گا گھر میں، فیملی میں، ٹیم میں، چیزوں میں، اس حساب سے آپ کو رزلٹس بھی ملنے شروع ہو جاتے ہیں. قدرت کے قانون ہے یہ، آپ کے جلدی چاہنے سے چیزیں نہیں ہو جاتی ہیں. جس نے سب بنایا اس نے کہا جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، سوچ لیں ہم لوگوں کے کام کیسے ہیں. اور پھر اسی طرح پہلے ہم ایک آدمی ہوتا ہے، پھر وہ دو بنتا ہے، پھر اس کے بعد باقی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر پیانو کی ایسی آواز آتی ہے لتا جی اور نتن مکیش کی کہ ساری زندگی فلم آئے ہوئے 30-40-50 سال گزر جائیں شاید، لیکن یہ چیز، یہ گانا، ٹریک ایسا ہی رہے گا. جب بھی آپ سنیں گے تب بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ فیملی اور ٹوگیدرنیس، اور ایک آواز سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا، اور پرانی بچھڑی ہوئی باتیں، یاداشت چلی گئی ہے ہماری، واپس آ جاتی ہے، لیکن وہ اس کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے. اور پھر ایک ایسی آواز کانوں میں آتی ہے، پہلے پیانو، بلکہ ایسا کرتا ہوں اس کے لیے میں ایک اور طریقہ نکالتا ہوں آپ کے، تاکہ اس میں آپ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو ریلیٹ کر پائیں، آسانی ہوگی ہم تمام لوگوں کو. یہ لیجیے، ہاں हर कदम एक नई जंग है जी। और बहुत ही मजे का सवाल उन्होंने कहा, जी आपने जो बताया आप इस काम के 40-60,000 डॉलर्स पर ईयर लेते हैं, तो उसमें आपने कहा कि एक चीज डिफरेंट होती है जो इस शो में नहीं होती, और वो क्या होता है जी? उनको मैं, एक तो ये सब कुछ इंग्लिश में होता है, दूसरा उनको बहुत सख्ती से मना किया जाता है कि अपना दिमाग इस्तेमाल मत करें अपनी जो भी क्योंकि जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, जिन दिमाग ने ये प्रॉब्लम्स बनाए हैं, वो दिमाग इसका सोल्यूशन नहीं लाएगा। इसके लिए किसी के अगर मेरे पास आए हैं तो जो मैं कहता हूँ वो करना पड़ेगा, अपनी मर्जी नहीं करनी होगी। और लेकिन एक साथ जो मैं चीज़ करता हूँ, लाइफ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, क्योंकि मेरा ये अपना है, एक मैं साथ उनको गारंटी ज़रूर देता हूँ, अगर मैं जो कह रहा हूँ आप करेंगे और बीच में डंडियाँ नहीं मारेंगे और कार्रवाई नहीं डालेंगे मेरे साथ, और करके ये नहीं कि मुझे बताएंगे नहीं कि ऐसे हो जाएगा वैसे मजबूरियां थी, पहले मुझे पूरा एक्सप्लेन करें, हर चीज़ पे एक घंटा एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद उनको बताया जाता है क्या करें। आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी का नुकसान हुआ इस काम में, और गारंटी उनकी ये देते हैं कि काम होगा। तो लेकिन उसमें होता क्या है, अब देखा लाइव कोचिंग में होता है, आपको लेक्चर मिलता है, आपको 2 घंटे बाद आपसे की जाती है, ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, वैसे लाइफ में भी होता है, और या फिर किताब लिख दी जाती है, तो आप हर वक्त अवेलेबल नहीं होते। प्रॉब्लम हर वक्त होते हैं, जिंदगी हर वक्त चलती रहती है। हमारे प्रॉब्लम्स क्यों हैं? हमारे प्रॉब्लम एक तरीके से सोचने की वजह से हैं। क्यों मेरा एक ही दोस्त हमेशा जहाज़ों से लेट हो जाता है? क्यों उसी का ही सामान गुम जाता है? क्यों उसको ही हर वक्त रोना पीटना लगा रहता है उसका? क्यों आज तक 15-20-25 सालों में वो उसका कोई मसला हल नहीं हो पाया? क्यों? बिकॉज उसके सोचने का तरीका ऐसा है, और वो उसको बदलना नहीं चाहता, और वो उसकी हड्डियां गलने लग गई हैं। अब जिस्म बर्बाद हो रहा है, जहन बर्बाद हो रहा है, रिश्ते बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ रिजिड होने की वजह से नहीं समझ रहा। हर वो आदमी जो जिसको इस उम्र में आके मुझे पता चला कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो आदत छोड़ दी हर वक्त गोश्त खाने की, इस उम्र में आके पता चला कि कौन कौन सी चीजें करने से जहन को सुकून मिलता है और हाउ मच इज गुड इनफ, इस उम्र में आके पता चला रब जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है जिंदगी में आसान करने के लिए, रब की एंटिटी है, उसको मैंने अपने लिए अजाब के तौर पे अपना लिया है, और हर बात पे उससे डर रहे हैं, हालांकि डरने के लिए रिश्ता बनाना ही नहीं था, ये कहानी सारी और थी, तो बदल दिया उसको। इस उम्र में आके पता चला कि एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है, और वक्त के गुजरने के साथ साथ और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो और ज्यादा पक्के हो गए। अभी आके पता चला है कि पानी कितना जरूरी था सारी चीजों के लिए, अभी और अभी पीना शुरू हो गए। तो रिजिड होने जस्ट बिकॉज मैं ऐसा ही हूं, और तू क्यों, वो गांव में कहते थे खोते हैं, तू क्यों हो जाए भाई क्यों हो जाए तू डंगर, मतलब कि इसका मतलब है डंगर कहते हैं जानवर, क्योंकि जानवर है, क्यों ऐसे है तू बदल रहे हैं आपको, मैं ऐसा ही हूं जी, और ऐसे ही हो तो फिर रोते क्यों रहते हो, ऐसे ही हो तो फिर तकलीफ में क्यों रहते हो हर वक्त। तो गांव के लोग बहुत सीधी सीधी सट्टें करते हैं, सट्टें कहते हैं अटैक करने को, सीधा सीधा हमला करना। तो उसमें एक और चीज जो होती है, वो 24 आवर्स के लिए मैं अवेलेबल होता हूँ उस पैकेज में, तो 24 घंटे में सुबह दोपहर शाम रात किसी वक्त भी आपको सिचुएशन आई, अपने जहन से उसका हल नहीं निकालना, पूछ लेना या बता देना अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है, वरना तो आप रूटीन में, रूटीन के काम करने से जिंदगी खराब नहीं होती है, 4-5 चीजों को अपनी जगह पे ना रख के करने से जिंदगी खराब होती है, एम ठीक ना होने का। कई लोग सिर्फ फाइनेंशियली पैसा बनाना उनको बहुत अच्छा आता है, وہ بزنس مین ہوتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کا ذہن بزنس میں کام کرتا ہے تو رشتوں میں بھی بزنس کے طور پہ کرنا سیکھو, کمیونیکیٹ بزنس میں اچھا کرتے ہو تو زندگی میں بھی کرنا سیکھو, ٹھیک ہے. ہیلتھ پہ دھیان دو, ذہن کی ہیلتھ کا, تھاٹ کی ہیلتھ کیسے بنائی جاتی ہے, تو پھر ریزلٹس آتے ہیں. لیکن اس کے لیے 24 گھنٹے اویلیبل رہنا ہوتا ہے تاکہ آپ کال پہ اور ٹیکسٹ میں ہر وقت آپ اویلیبل رہتے ہیں تاکہ ان کا مسئلہ جو ہے وہ جلدی سے جلدی ختم کیا جائے, اور جلدی سے جلدی ختم کرنا ہوتا ہے کیونکہ مسائل اتنے زیادہ ہوتے ہیں. آپ ہر وقت اگر آپ مسائل سے لڑتے رہیں گے نا تو ایگزاسٹ ہو جاتے, تو پھر آپ اپنا کام نہیں کر سکتے. کریٹو کام کے لیے کاموں سے علیحدہ ہو کر اپنے لیے وقت نکالنا بھی اور بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن آدمی اس پہ کام کرتا رہتا ہے. اچھا جی, ہوا یہ ہے, اب یہ ایشو تو ختم ہو گیا اتنی جلدی, ٹھیک ہے. تو ابھی تک میں نے تو بتایا ہی نہیں آپ کو کہ میں نے کیا سیکھا, کیونکہ ہر دفعہ آپ لوگوں کو میں آگے کر لیتا ہوں اپنے آپ سے, تو پھر ہر دفعہ جو ہے میں بیچ کی باتوں سے ہم نکل جاتے ہیں. تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک شو, اگلا جو شو ہے اس میں میں بتاؤں گا کہ میں نے کیا سیکھا, اور آپ لوگ اپنی ای میلز کریں گے, ہم وہ کریں گے اور لسنر شو بنا دیں گے اس کو, اور پھر ہم اس میں سے کچھ, ایسے آج میگا جی نے بہت اچھا کو ڈیپینڈنسی اور انٹر ڈیپینڈنسی کی بات کی تھی, اس پوائنٹ کو آگے لے کے چلیں گے, اور سیلف ڈیولپمنٹ سے کچھ ریلیٹڈ چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے, اور ایک اور خوبصورت سا شو بنائیں گے. اور کسی نے بڑا مزے کا ایک سوال پوچھا, چلیں لسنر شو میں اس کو ڈیل کریں گے, انہوں نے بعد میں کریں گے. 972-501-9390 اور ٹھیک, خوش رہیے جی. کچھ اور مزے کے ایک دو پوائنٹس بھی آئے تھے کہ آزاد جی اگر آپ پروگرام نہیں کرتے تو کیا کرتے, یہ ساری باتیں ہم مزے مزے کے کچھ چٹکلے اور جو آپ میرے ساتھ فن کرتے ہیں سارا وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ضرور بہت جلد, اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہنسی خوشی رہ رہے ہوں گے, زندگی زبردست چل رہی ہوگی. سو لیٹس سی, اور اس کے ساتھ ہی آپ تمام لوگوں کو خدا حافظ کہتے ہیں جی. وینسڈے کا شو لسنر شو ہوگا, میں نے آپ سے کیا سیکھا, اس میں میرے پاس 2-3 پیجز ہیں جو میں نے پوائنٹس صرف نوٹ کیے ہیں, 10-15 پوائنٹس ہیں, وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ لوگ آزاد ایٹ ریڈیو آزاد ڈاٹ یو ایس پہ پہنچا سکتے ہیں اپنی فیڈ بیک بھی, اور وہ بھی پارٹ بنا دی جائے گی حصے کا. کچھ ای میلز بھی آئی ہیں کچھ لوگوں کی, ان کے پوائنٹس پوائنٹ فارم میں انہوں نے لکھے ہیں. اسمارٹ لوگ, کمال لوگ ہیں جی, اور ہمارے فیوریٹ ہیں جو ایسے کرتے ہیں, آسانی پیدا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اور جانے سے پہلے لاکھ باتوں کی ایک بات, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. ایک فرمائش ہے, ایک نظم لکھی تھی ہم نے بہت پہلے, جب ہم زندگی کو نہیں سمجھے تھے تو حالات کچھ ایسے تھے, اور کبھی کبھی اب بھی جب لال پیریڈ میں بندہ چلا جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے دل کی یہ آواز ہو سکتی ہے. دل کی آواز تو سمجھتے ہیں نا آپ, اگر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہمارے کان صاف نہیں ہے, ویکس صاف کرنی ہے. دل کی بہت زور سے آواز آتی ہے, جیسے دھک دھک زور سے آتی ہے نا, ایسی ضمیر کی آوازیں اور روح کی آوازیں بھی ایسی آتی ہیں. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. میں بھی نہ بس پتہ نہیں کہاں گھومتا رہتا ہوں, شاید خود کو ڈھونڈتا رہتا ہوں. کبھی لگتا ہے کہ مل گیا ہوں شاید, بس ہاتھ آیا ہی تھا نکل گیا ہوں شاید. پتہ نہیں میں کس دنیا کا واسی ہوں, اس کا جس میں میں بستا ہوں, یا اس کا جو مجھ میں بستی ہے. دونوں کا آپس میں کچھ گٹھ جوڑ دکھتا جو نہیں ہے, دونوں کا آپس میں کچھ گٹھ جوڑ دکھتا جو نہیں ہے, ڈھونڈتا رہتا ہوں وہ ایک موڑ ملتا جو نہیں ہے. شاید ان دونوں کا ملن میں چاہتا بھی نہیں, یا شاید ان دونوں کا ملن میں چاہتا بھی نہیں, شاید دل کو آرام بہت سسکتا جو نہیں ہے. میں اور زمانہ بنا گئے میری ذات کا یہ گنجل, میں اور زمانہ بنا گئے میری ذات کا یہ گنجل, کھیلتا رہتا ہوں اب اس سلجھتا جو نہیں ہے. گھبرا جاتا ہوں کہیں مر نہ گیا ہوں, جذبوں کی حرارت سے میرا روم روم دہکتا جو نہیں ہے. کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا, کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا مجھ سے وہ خود سے بھی اب ملتا جو نہیں ہے. میں بھی نہ بس پتہ نہیں کہاں گھومتا رہتا ہوں, کیوں خود کو ڈھونڈتا رہتا ہوں. मैं भी ना बस।
Good night.